ओम शांति। राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्गत विशेष कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी जिस प्रांगण में बैठे हैं वह प्रांगण कहलाता ही ज्ञान सरोवर है और हम सभी उसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के पवित्र और शुद्ध वाइब्रेशंस को भी फील कर रहे हैं। और आप सभी का यहाँ पर समय पर पहुँचना ये दर्शाता है कि यहाँ जो भी सत्र आपके लिए रखे जा रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी समझकर और समय की वैल्यू देखकर आप सभी समय पर पहुंच रहे हैं। अभी हम आज के सत्र की शुरुआत करें उससे पूर्व हम हमारे मंचासीन अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिनके द्वारा इस मंच की शोभा बढ़े। हमारे बीच हमारी आदरणीय राजयोगिनी दीदी जी ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कृपया दीदी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। कुछ अतिथि हमारे बीच अभी पहुंचने ही वाले हैं। ब्रह्मा कुमार राजेश दवे जी, ब्रह्मा कुमार महर्षि दवे जी, डॉक्टर सुनीता पांडे, भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया, आप सभी भी मेरी आवाज को सुनकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और हम सभी अभी अभी आराम करके और फ्रेश मूड में यहाँ आकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से खुशी और उमंग अपना दर्शा सकते हैं। जोरदार तालियों से हम हमारे अतिथियों का वेलकम करते हैं। शुभ स्वागत, शत स्वागत। विश्व भर में जलवायु संकट को हम सभी महसूस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो बदलाव सिर्फ महसूस होने तक नहीं रह गया है परंतु प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से चाहे ऋतु कोई सा भी हो लेकिन परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दो दिन पहले एक आप अनुभवी बुजुर्ग के साथ मेरा बैठना हुआ और उन्होंने बहुत सहजता से कहा कि मेरे 65 वर्षों के अनुभव में मैं आपको बता सकता हूं कि मई के महीने में मैंने कभी गर्म पानी से नहीं नहाया था लेकिन आज वो रिकॉर्ड टूट गया। इस छोटी सी बात ने अंदर तक हिला दिया। ये समझ में आ गया कि मौसम का बदलना इंसान के बदलने से ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। इंसान का परिवर्तन तो सकारात्मक दिशा में हम चाहते हैं परंतु मौसम तो इस प्रकार से अपना रूप बदल रहा है। और जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है उस संकट से उभरने के लिए चाहे अलग अलग कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी बातें हो रही है लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं उसको जानने के लिए आज बहुत सहज यौगिक खेती का उसमें क्या रोल है और किस प्रकार से हम इस जलवायु संकट से उभरने के लिए निदान ढूंढ सकते हैं इसके लिए हमारे बीच हमारे गणमान्य अतिथि पहुंच चुके हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार मैं अतिथि देवो भव की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे मंचासीन अतिथियों को पुष्पों द्वारा और बैज द्वारा वेलकम करें, स्वागत करें। और स्वागत की इस परंपरा को हम सभी भी तालियों की गूंज से आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे, तालियां बजाते रहे और स्वस्थ बने रहे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद है ब्रह्मा कुमार राजेश दवे जी, ब्रह्मा कुमार महर्षि दवे जी, डॉक्टर सुनीता पांडे, भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया जी और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का हमारा विषय यौगिक कृषि द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का निदान। अब हम इस सत्र की ओर बढ़ते हैं। उससे पूर्व सरल भाषा में सिर्फ इतना समझने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हम 97 तक होता है तो हम मानते हैं कि हाँ हम ठीक है, हम स्वस्थ है। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़कर 2 डिग्री भी बढ़ जाता है तो तुरंत हमें ध्यान आता है कि हमें बुखार है। और जैसे ही पता चलता है 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते ही कि हमें बुखार है तो एक स्वस्थ निरोगी शरीर वाला व्यक्ति अस्वस्थता का अनुभव करने लगता है। हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि किस प्रकार से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते ही बुखार से तपता हुआ बदन हमें अपने अस्वस्थ होने का इशारा देता है। भाइयों और बहनों, आवश्यकता है अपनी जगह धरा को देखने की, पृथ्वी को महसूस करने की। अगर उस धरा का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ जाए, और वो बढ़ रहा है, 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर अब तक हम निरंतर तापमान की बढ़ोतरी धरा पर देखते जा रहे हैं, और ये हमें यही दर्शाता है कि अभी पृथ्वी को भी बुखार आ रहा है। तो समझ लीजिए कि पृथ्वी का बुखार हम सबके जनजीवन को अस्वस्थ कर सकता है, न केवल मानव परंतु धरा की जो सुंदरता है, जो शोभा है, वो प्रकृति से बनी चीजें और साथ ही साथ अलग अलग जीव जंतु सभी धोखे में आ सकते हैं। तो इसका निदान क्या है, कैसे हम इस पर हरेक व्यक्तिगत रूप से काम कर सकते हैं, उसके बारे में आज का ये चर्चा सत्र है। और इसमें हमारे बीच जो अलग अलग हमारे गणमान्य अतिथि है, उनमें सबसे पहले राजेश दवे जी जो DGM नाबार्ड मुंबई से है। आपने न केवल इस संसार के परिवर्तन के लिए अपने जीवन को लगाया परंतु कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी आपकी सेवाएं सराहनीय है, और उसी के साथ साथ आपने अपने जीवन पथ पर ऐसा सुगम मार्ग चुना, राजयोग का मार्ग, जिसके आधार से आपने न केवल अपने जीवन को परंतु अनेकों को भी जीवन जीने की प्रेरणा दी। ऐसे हमारे बीच राजेश दवे जी है। आप विशेष रूप से गुजरात ग्रामीण विकास के लिए तो प्रमुखता से कार्य करते ही है। आपने विशेष इंडो जर्मन वॉटरशेड और जलवायु प्रदूषण के ऊपर भी विशेष रूप से सक्रियता से कार्य किया है, और आप वर्तमान में फार्म ब्रिज फाउंडेशन के साथ टीम अप होकर विशेष सह संस्थापक के रूप में ग्रामीण महिलाएं एवं युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आपने विशेष रूप से उनके विकास का ध्यान रखा है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप राजयोग के पथिक हैं, पिछले 35 वर्षों से आप विशेष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बीच हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और बहनों से अनुरोध करते हैं आप हमारे भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया जी का भी पुष्पों से और बैच से स्वागत करेंगे। और फिर हम सुनते हैं राजेश दवे जी से यौगिक कृषि द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का निदान, उस पर अपने विचार। राजेश दवे जी, एक बहुत सुंदर सुअवसर हमें मिलने जा रहा है। राजेश दवे जी के साथ हमारे बीच ब्रह्मा कुमार महर्षि, आप देख रहे हैं सामने एक युवा। जबकि आज तक हमने महर्षि नाम ऋषि मुनियों के आगे सुना है, योगाचार्यों के आगे सुना है, परंतु यह युवा महर्षि अपने नाम की ही तरह राजयोग के अभ्यास से बाल्यकाल से ही अपने जीवन को इस सात्विक पथ पर चला रहे हैं। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आप राजेश जी के सुपुत्र हैं और यहाँ इस विषय को लेकर आज पिता पुत्र की जुगलबंदी देखने का मौका हमें मिलने जा रहा है। तो हम जोरदार तालियों से दोनों को वेलकम करते हैं और उनके द्वारा उनके विचार सुनते हैं।
ओम शांति। ओम शांति का मंत्र हम सभी के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। और हमारे वेदों में भी शांति का बहुत महत्व बताया। आप सभी जो पधारे हुए मेहमान हैं, ये जो यात्रा है आपकी, ये यात्रा को हम प्रॉमिस करते आज कि आपकी आज की ये यात्रा अभी से जो शुरू हो रही है, जो ज्ञान यज्ञ को लेकर है, ज्ञान और विज्ञान के साथ ये 2 घंटा आपके लिए बहुत विशेष है। मंच पर उपस्थित महानुभाव आदरणीय राज दीदी जी, आदरणीय सिसोदिया साहब, वंदनीय सुनीता पांडे जी, आदरणीय रूपा बहन जी और महर्षि भाई, आप सब लोग यहां जब से बैठे हैं आपको कैसा फील होता है? देखिए, ये ठंडक और ये प्रकृति, वो तो आप हिमाचल में कहीं चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ तो भी आपको महसूस होगी, लेकिन यहां कुछ और प्लस में है। वो क्या है, कोई बता सकते हैं? यहां और क्या है, क्या महसूस आप कर रहे हो? देखो, माउंट आबू की हाइट है इसलिए टेम्परेचर तो डेफिनेटली कम है, आजू बाजू नेचर है, कुदरती सौंदर्य भी है, लेकिन उसके अलावा कुछ है क्या यहां? जी, शांति है, पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अच्छा। यहां ये वायुमंडल बनाया गया है और ये वायुमंडल जो है वही आने वाले जलवायु परिवर्तन का सामना करेगा। तो आज हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मीटिंग में सबसे ज्यादा और भारी दिल से चर्चा अगर होती है तो वो है जलवायु परिवर्तन, और दूसरा टॉपिक है टेररिज्म। लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी है आज तो वो है जलवायु परिवर्तन। और वाकई में जलवायु अगर परिवर्तन होगा तो सिर्फ प्राणी मात्र पशु मात्र नहीं, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व भी बहुत खतरे में है। और एस्पेशली अगर हम बात करें कृषि की तो और तकलीफें बढ़ सकती है, इसीलिए ये टॉपिक को यहां रखा गया। अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। यू गॉट द माइक? सो आप सबको यहां विशेष हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जलवायु जो है उसको वापिस परिवर्तन से रोकना, उनको हमारे फिर से वाइब्रेशन देकर उनकी जो गतिविधि है जलवायु परिवर्तन की, जो डिस्ट्रक्टिव है, उसको मिनिमाइज करना वो हम सबके हाथ में है। और ये कैसे है जिसमें न सिर्फ विज्ञान लेकिन विज्ञान के साथ अध्यात्म का बहुत बहुत रोल है। भाइयों और बहनों, आप देखिए, हम सब ने बचपन में कहानी सुनी थी, अगर हमें किसी टारगेट पे पहुंचना है तो हमें दो दिशा की जरूरत है। जैसे एक गांव में एक अंधा था और एक पंगुम था, यानी उनके पांव नहीं चलते थे। दोनों को एक जगह जाना था, अब कैसे जाए? फिर आप जानते हैं कि जिसके पांव थे लेकिन आंखें नहीं थी, उसके ऊपर जिसके पास आंखें थी उसको कंधे पे बिठा दिया, उसने दिशा निर्देश किया, और पांव किसके चले? जो अंधा था उसके, और जिसके पांव नहीं थे उसने दिशा बताई। भाइयों और बहनों, खुशी की बात है, ये जो अध्यात्म है उसके पास आंखें हैं, दिशा है, और ये जो विज्ञान है उसके पास सिर्फ पांव है, आंखें नहीं है। अगर दोनों मिल जाए तो जलवायु तो क्या, पूरा विश्व परिवर्तन हो सकता है। हर बात में हमारी जीत ही जीत हो सकती है। हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रोल, जैसे मैं और महर्षि आज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रोल में आपके सम्मुख हमारा वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि जीवन में है ही जो कुछ भी है वो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, यानी एक दूसरे का सहयोगी बन के आगे बढ़ना। तो आइए इस यात्रा को और आगे ले चलते हैं।
ओम शांति। राजेश भाई जी ने जो कहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का रोल बहुत ही एक साथ आगे बढ़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम अभी, मैं छोटा सा मेरा परिचय दूंगा जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारी एक सेक्शन एड नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और हम बहुत सारी कॉरपोरेट, ताकि जो एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन कोई कंपनी कर रही हो जो इस गांव में बसी हो, उसके CSR प्रोजेक्ट्स जो है वो हम हैंडल करते हैं, और उसमें हम ये सारी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। और पूरे भारत देश में हम टोटल 8 राज्यों में 150 से ज्यादा गांव में कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। और वहां पे जैसा आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन से सिर्फ हमारा देश नहीं, सारी पूरी दुनिया जूझ रही है। और उसमें अगर हम किसी लेमन, आप सब तो कृषि विभाग से सब जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि एक किसान को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनका पूरा जो ऑपरेशन होता है, फार्म ऑपरेशन होता है, उनके जो निर्णय होते हैं कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कब क्रॉप बाहर आना चाहिए, वो सब जो है एटमोस्फियरिक कंडीशंस पे डिपेंड होता है। और उनके हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं कि थोड़ा भी एक चीज चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल इस साल की हम बात करें तो मार्च के महीने में, अप्रैल के स्टार्ट में जब गेहूं और अरहर जब हमारे गांव में बाहर आने वाले थे, तब सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा एक बवंडर आया, ऐसा एक तूफान आया कि बहुत ज्यादा जो है उनका जो क्रॉप तैयार हो गया था, जो किसानों ने 3 महीने 3.5 महीने अपने सगे बेटे की तरह जिस फसल की देखभाल करी थी, जिसको उन्होंने पाला था, पोसा था, हर एक चीजों से बचाया था, इवन जो सुअर, जंगली सुअर है, नीलगाय है, उनसे भी बचाया था, पर एक ऐसा 10 मिनट का 15 मिनट का एक बवंडर उनकी पूरी जो ये मेहनत है उन पर पानी फिर के चला गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लाइमेट चेंज फेनोमेनन्स हो रहे हैं अभी, चाहे वो हम खरीफ सीजन की बात करें, चाहे रबी फसल की बात करें, चाहे समर की जो फसल लेते हैं उसकी बात करें। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट्स में, ये जो आप देख पा रहे जो लिस्ट है जहां पे हम बहुत सारे अलग अलग 8 राज्यों में काम करते हैं, तो उसमें हमने किसानों को कैसे साइंस से और आध्यात्मिकता से लिंक करके उनका क्लाइमेट प्रूफिंग किया, कि ये जो क्लाइमेट चेंज में प्रूफिंग का क्या मतलब होता है, जैसे वाटर प्रूफिंग होता है कि वाटर से अगर आपकी घड़ी जो है वाटर प्रूफ है तो पानी से उस घड़ी को जो है कभी कोई नुकसान नहीं होगा, वैसे ही क्लाइमेट चेंज से आपकी फसल को नुकसान ना हो उसको क्लाइमेट प्रूफिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो हमने कैसे क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशन इंप्लीमेंट किए वो उसकी हम आपको एक झलक दिखाएंगे, बहुत सारे वीडियोज भी दिखाएंगे और बहुत सारे यहाँ पे लाइव डेमोज भी दिखाएंगे कि हमने कौन से से टूल्स है, कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ती है, जो कोई भी किसान जो है वो अपना सकता है। और आने वाले समय में इस खरीफ में हमारे किसान क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे।
वैसे आप सबको बताएं कि दो पहलू हैं, एक अध्यात्म और एक विज्ञान, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मैं यहां से आपको अध्यात्म का कनेक्शन विथ साइंस टेक्नोलॉजी बताता रहूंगा, अध्यात्म की महिमा, योग की महिमा, वो कैसे हमारी फसल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जलवायु को भी बहुत पॉजिटिव कर सकती है। ये समय है हमारी शक्तियों को जागृत करके अध्यात्मिक, जिसको पराभौतिक कहते हैं साइंटिस्ट, मेटाफिजिकल एनर्जी, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी, हमें कोई जरूरत नहीं कि हमें बहुत हिमालय में जाकर 10 साल तपस्या की तब जाकर हम कुछ अच्छा ऋषि कृषि कर सके। हमें सिर्फ 7 दिन का, 1 घंटे का पर डे 7 दिन का राजयोग का कोर्स करना पड़ेगा इन पवित्र बहनों के साथ, और फिर ये कोर्स में आप तैयार हो जाएंगे आपकी आध्यात्मिक शक्ति को, आपकी रिसर्च, आपकी खेतीबाड़ी, आपका गांव के ऊपर जलवायु को जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो जैसे महर्षि जी कह रहे थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी का अपना रोल है, ऐसे ही अध्यात्म का अपना रोल है। मैं आपके समक्ष एक, बिफोर वी स्टार्ट, हम एक एग्जाम्पल सिनेरी रखना चाहते हैं। आप सब लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर, चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं, चाहे तो आंख खुली रख सकते हैं, एक दृश्य देखो। उस दृश्य में श्री कृष्ण जी है, अपने द्वारका में बैठे हैं, राजधानी में। उनको मैसेज मिलता है कि आपके जो कजिन ब्रदर्स है 5 पांडव, वो यहीं कहीं पोरबंदर के नजदीक में जो फॉरेस्ट है वहां पे आजकल आवास कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की बहुत इच्छा हुई कि हमारे भाइयों और कुंती माता को मिले, बुआ को, और वो वहां जाते हैं। जब वहां गए तो उन्होंने पांचों भाइयों से गले मिले, गले मिलकर बड़े प्रेम से पर्ण कुटीर में बैठे। आप सीन को विजुअलाइज करते रहना। और फिर श्री कृष्ण जी ने पूछा, आप सब लोग ठीक हैं? द्रौपदी, आप ठीक हैं? माताजी, सब ने बहुत कहा कि यहां बहते झरने हैं, फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं, हमारे कोई तकलीफ नहीं है। 14 वर्ष का जो वनवास मिला है उसमें से अब तो 8 साल तो खत्म हो चुके हैं, और बाकी हम बहुत आराम से कर लेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा तो आप क्या सोचते हो, नेक्स्ट प्लान? तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट प्लान ये है कि बस 14 साल कंप्लीट होंगे और हमें हस्तिनापुर की चाबी मिल जाएगी दुर्योधन से। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपको ये एहसास नहीं है, आप बड़ी शांति से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं है आने वाले भूकंप का, आने वाले तूफानों का। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा, वो कैसे? बोले, आपको हस्तिनापुर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ले लिया और कुर्सी का टेस्ट कर लिया वो आपको वापस नहीं देगा। फिर उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर ने बहुत निर्दोषता से, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने, जाओ तपस्या करो, आने वाले समय की पहचानो, और अपने जीवन में जो आने वाली तकलीफें हैं उसका सामना करने के लिए सक्षम बनो, उसका सामना करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड करो, उसका सामना करने के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त करो। ये दिव्यास्त्र, उसके बाद पांचों पांडव जाते हैं और अलग अलग दिव्यास्त्रों का आविष्कार करते हैं, उसको चलाने की विद्या सीखते हैं। भाइयों और बहनों, ये आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए है। आने वाला जलवायु परिवर्तन में हम सभी पांडव हैं, और परमात्मा हमें इशारा दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में आपका अन्न, आपका जल, आपकी मृदा, उसको कैसे ठीक रखो ताकि आपको भूखमरा यानी स्टार्वेशन डेथ का सामना न करना पड़े। इसलिए जलवायु परिवर्तन को अपने जीवन में महत्व दो और दिव्यास्त्र प्राप्त करो। उसी दिव्यास्त्र को लेकर अब प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। थैंक यू।
शुरू करने से पहले एक नम्र विनंती है कि जो आप पीछे बैठे हैं, अगर अब आप आगे आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियां खाली बैठी रखी हैं, तो आप कृपया वहां पे फिल करिए, तो आपको यहाँ पे जो मैं ग्लास में और वो सब डेमो जो दिखाने वालों, वो बहुत ही क्लियरली दिखेगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस स्लाइड पे मैंने 2022 की जितने भी अखबार थे जहां पे मेन हेडलाइंस थी क्लाइमेट चेंज, जो एग्रीकल्चर को, ताकि हमारे किसानों को जो इफेक्ट कर रहा है इंडिया के और दूसरे देशों के भी, उसकी एक थोड़ी झलक मैंने यहां पे दिखाई है। आप जो देख सकते हैं उसमें सबसे ज्यादा, सबसे नीचे का जो मेन टाइटल है वो कह रहा है कि इंडिया, जो सबसे पहला टाइटल वो कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी में 1.5% तक लॉस हो सकता है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो प्रोडक्शन कम हो रहा है। आपने इस साल के जो रबी की जो फसल थी गेहूं, उसमें आपने इकोनॉमिक टाइम्स में हेडलाइंस भी पढ़ी होगी कि 10 किलोग्राम्स का जो है डेफिसिट आया है गवर्नमेंट के भंडार में वीट का, अनाज का। तो वैसे ही बहुत सारी दूसरे अनाजों का भी इस साल मैंने, अगर मैं, क्योंकि हम बहुत ही क्लोजली किसानों के साथ काम करते हैं, मेरे महीने के 30 दिन में से 20-25 दिन गांव में ही जाते हैं, इस साल मैंने अरहर की फसल के, गेहूं के फसल के जो दाम देखे मार्केट में, जो किसानों को मिल रहे थे, एमएसपी की बात नहीं कर रहा, जो सिंपल एक कोई छोटा व्यापारी हो कोई एक तालुका में, वो जो दाम दे रहा था किसान को, ऐसा वो खुद किसान ने अपने 30-40 साल की किसानी में नहीं देखे थे, उतने अच्छे दाम मिल रहे थे, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आई है, और उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम जिस भरूच में जिले में जहां पे काम करते हैं, वहां पे अरहर की बुआई श्रावण के महीने में होती है, जो जुलाई के अंत में अगस्त की शुरुआत में होती है, पर इस साल बारिश इतनी कंसिस्टेंटली रही हमारे जिले में क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि किसानों को समय ही नहीं मिला कि जमीन थोड़ी सूखे और वो अपना ट्रैक्टर या कोई चीज लैंड प्रिपरेशन के लिए अंदर ले जा सके। तो हर 2 दिन बाद 15 मिनट की एक बारिश हो जाती थी, हर 2 दिन बाद 15 मिनट की एक बारिश हो जाती थी, सबने बीज ले रखे थे, सबने सारी दूसरी तैयारी कर रखी थी, खाद ले रखा था, पर वो अपना ट्रैक्टर जो है वो खेत के अंदर ले ही नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि खेत सूख ही नहीं रहा था। तो ऐसे भी प्रैक्टिकल चैलेंजेस मिले, और वो जो बुआई है जो अगस्त में होने वाली थी, अगस्त की शुरुआत में, वो जाके अक्टूबर एंड में हुई थी बुआई, दिवाली के बाद, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन में लॉस आया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमने कैसे साइंस के मदद से और अध्यात्म के मदद से, यौगिक खेती की मदद से कैसे हमने ओवरकम किया, प्रोडक्शन जो कम होने वाला था इसको हमने कैसे फिर से स्टैंडर्डाइज कर दिया, वो सब हम आपको अभी झलक थोड़ी दिखाएंगे हमारे प्रेजेंटेशन में।
आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वरदानी प्रकृति और मानव दोनों का बहुत गहरा रिलेशन रहा। जैसे अभी आपको बताया कि ये सब बातें हैं जलवायु परिवर्तन की, लेकिन उसको हमारी आंतरिक शक्ति से, हम अगर हमारा दिल साफ है, हमें कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी है, लेकिन अगर दिल साफ सफाई है, राजयोग सीखे है, परमात्मा के साथ कनेक्शन, क्योंकि ये जो भी हम आज यहाँ पे है, सर्वांगीण ग्राम विकास का आधार, शाश्वत योगिक खेती, अब योग क्या, योग यानी मिलन, आपका योग था तो आप यहाँ बैठे हैं, है ना, आप हमारा योग है तो हम आमने सामने बैठे हैं। तो ऐसे ही एक योग होता है जो परमात्मा से मिलन का होता है, जो आज सुबह से आपने रियलाइज किया कि हम सभी आत्माएं हैं, न कि मनुष्य यानी शरीर। तो अगर हम योग को अपने जीवन में दे स्थान, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमारी भावनाएं, हमारी श्रेष्ठ कामनाएं दिल से निकलती है, आत्मा से निकलती है, तो पांचों तत्व हमें सपोर्ट करने लगते हैं। सिर्फ जरूरत क्या है, सिर्फ इतना ही जानना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है, मैं इस विश्व के लिए बहुत सारी शुभकामना देता हूं, मेरी खेतीबाड़ी में और हर जगह। तो आई थिंक दैट स्लाइड यू रिपीट, यस। तो देखिए, क्या हम हमारी धरती को प्रकंपन नहीं दे सकते हैं? सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है। हमारा भी फार्म है, 8 बीघा का फार्म है। हम लोग पांव रखने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, धरती का परमिशन लेते हैं। कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने दिल की जो सफाई है वो उस एलिमेंट के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। सूर्य को भी हम उनकी ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति में आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। इस देश का नाम भारत क्यों रखा? क्योंकि भा का मतलब होता है भास्कर। भाई और बहनों, आपके लिए खुशखबरी, पूरे विश्व में 330 दिन से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सुटेबल सोलर इंसोलेशन अगर गिर रहा है वो सिर्फ भारत देश है, और पूरा विश्व तरसता है इस सूर्य प्रकाश को जो हमारे पास परमात्मा ने फ्री में रखा है। और आगे देखिए कि ये पांचों जो एलिमेंट्स है, जल को अभी आपको अगले सेशन में भी बताया, पानी के पास मेमोरी है और मेमोरी वो लेकर, क्योंकि वाटर इज द मदर ऑफ एलिमेंट, जितने भी तत्व है पंच महाभूत उसकी मम्मी या मदर कहो तो वो वाटर है। शरीर भी 70% से बना है। एक पौधा भी आप देख लेंगे कि फ्रूट को मॉइस्चर वाटर मेजर करेंगे, हर जगह सबसे बड़ा पैमाना है तो वो है वाटर यानी पानी, जल देवता। हम सब का एक बहुत बढ़िया रिलेशन रहा पांचों तत्वों से, क्योंकि जब हम देवताई गुणों वाले थे, हम देने वाले थे, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे, किसी को हिम्मत देंगे, किसी को आशा देंगे, किसी को कुछ अपने सल्वेशन देंगे, जब हम देवताई कैरेक्टरिस्टिक वाले थे तब हम पांचों देव प्रकृति के तत्व को भी देवता कहते थे। और ये देवतापन में तकलीफ सिर्फ एक ही है भाइयों और बहनों, ये यहां से ही शुरू होगी इस विश्वविद्यालय से, कि हम फिर से जो देवताई गुण थे, दाता थे, वहां से हम थोड़े लेवता बन गए, ये भी लाओ ये भी लाओ वो भी लाओ, और लेवतापन की वजह से प्रकृति नाराज है। वापिस हम डिवाइन क्वालिटीज देवतापन को धीरे धीरे लाएंगे तो डेफिनेटली प्रकृति हमारी सहयोगी और हमको सपोर्ट करने वाली बन जाएगी।
हम जब प्लान करते हैं हमारे क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशंस, तो मुख्य तीन चीजों में हम जो है ये तीन चीजों को हम मुद्दा में रख के वो जो प्लान करते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी, और तीसरा है इंक्रीजिंग एडेप्टेशन। रिस्क तो आप सबको पता ही है कि अगर किसी एक समय पे अगर बारिश होने वाली है, जो हमें जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट, अगर उससे पता चल जाता है तो फिर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास या तो हम उस एक क्लाइमेट चेंज का जो फेनोमेनन हो रहा है उसका या तो प्रभाव जो है वो हमारे फसल पे कम कर दे, और सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारे फसल को इतना सक्षम कर दे कि आगे चल के अगर ऐसे और प्रभाव होते जाए पर हमारे फसल को कोई डैमेज ना पहुंचे। तो जैसे इस साल अभी हमें एक महीने पहले IMD ने हमें पूरे देश को एक चेतावनी दी थी कि एक अल नीनो करके एक तूफान जो चक्रवात है वो अरेबियन सी में उठ रहा है, और उसकी वजह से जो बारिश है पूरे देश में इस साल काफी अराउंड 15-20% की कमी होने वाली है, और दो बारिश के बीच में गैप भी जो है वो काफी बढ़ने वाला है। तो इस हिसाब से फिर हमने रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी और इंक्रीजिंग एडेप्टेशन में ये दोनों तरीकों को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे जो है स्ट्रेटेजी प्लान करी है। अगर हम ये अंग्रेजी टर्म है रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी और इंक्रीजिंग एडेप्टेशन, पर अगर उसको मैं एकदम सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपने कभी फुटबॉल मैच देखी होगी टीवी में, उसमें अगर कोई प्लेयर जो है वो इंजर हो जाता है तो जब वो इंजर होता है तब एक फिजियो आता है और उसकी जहां पे भी उसके इंजरी हुई होती है, हम फिर से स्क्रीन देख सकते हैं प्लीज, तो जहां पे उसकी इंजरी हुई होती है वहां पे वो या तो पेन किलर या तो फिर ऐसा पेन रिडक्शन स्प्रे करता है, और वो जितनी कुछ गेम 15 या 20 मिनट की जो गेम बची हुई होती है, जो सेकंड हाफ में जो गेम टाइम बचा हुआ होता है, वो उतना सक्षम हो जाता है कि वो पूरा गेम वो अपना खींच लेता है और वो गेम कंप्लीट कर सकता है। तो उसकी जो पेन की जो सेंसिटिविटी थी वो कम करी इस मेजर के द्वारा, पर ऐसा जरूरी नहीं कि अगला गेम वो खेल पाएगा अगर इंजरी मेजर हुई तो उसके लिए फिर उसकी धीरे धीरे एक्सरसाइज होती है, उसकी या तो सर्जरी होती है, फिर वो मसल को वापस बिल्ड करके इतना स्ट्रांग बना दे कि प्रीवियस इंजरी उसको जो है वो इतना प्रभावित ना करे उसकी गेम को। तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एडेप्टेशन, तो रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी और इंक्रीजिंग एडेप्टेशन। तो अब इस परिस्थिति जो अल नीनो वाली जो मैं परिस्थिति कह रहा हूं, जिसमें किसान के पास ऐसा क्या पर्याय है, विज्ञान ने ऐसा क्या पर्याय दिया है जिसके उपयोग से वो जो बारिश में कमी होने वाली है, या तो फिर दो बारिश के अंतर सपोज 20-25 दिन बाद एक बारिश होती है, तो अपने वो फसल को कैसे बचा सकता है अगर उनके पास इरिगेशन ना हो? तो उसमें विज्ञान ने हमें क्या पर्याय दिया है वो मैं आपको अभी एक लाइव डेमो दूंगा। ये जो बॉटल में जो आप देख रहे हैं सफेद कलर का, जो आपको नमक जैसा लग रहा होगा, वो हमारे ही कृषि वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है। इसको कहते हैं हाइड्रोजेल, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो मैंने एक ग्लास में लिया है। हाइड्रोजेल जो है उसमें इतनी क्षमता है, इट इज बेसिकली अ सुपर एब्जॉर्बेंट, वो पानी सोखने की जो है वो क्षमता रखता है हाइड्रोजेल। जो आप एक जो कण आपने देखी थी नमक की, नमक जैसी जो थी, वो बड़ी होके अपने से 250 गुना बड़ी होने की क्षमता रखती है जब उसको एक्सेस पानी के जो है कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तब। अब अगर हम बात करें, हमारे देश में हर एक किसान बारिश की वजह से बहुत ज्यादा त्रस्त है। उनके दिमाग में ऐसा है कि बारिश बहुत ही कम होती है उनके खेतों में, उनके गांव में, अगर बारिश ज्यादा हो तो उनकी फसल जो है वो ज्यादा पकेगी। पर अगर हम गिनती भी करें, अगर मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पे 2022 में उस जिले में टोटल 860 mm की बारिश हुई थी, 860 mm मतलब 0.86 मीटर, और अगर हम एक एकड़ का जो एरिया लेते हैं वो समवेयर अराउंड 4400 स्क्वायर मीटर होता है। तो अगर हम ये गिने कि कितना क्यूबिक मीटर बारिश उसमें गिरी थी, और फिर एक क्यूबिक मीटर से 1000 लीटर में अगर कन्वर्ट करें, तो पिछले साल हमारे जिले के हर एक गांव के हर एक एकड़ में टोटल 37,40,000 लीटर पानी गिरा था। 37,40,000 लीटर पानी हर एक एकड़ में हमारे जिले के हर एक एकड़ में वो गिरा था। पर ज्यादातर क्या होता है कि वो जो पानी है जो गिरता है वो या तो बह जाता है या तो फिर वो जमीन के अंदर वो लीचिन हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। पर अगर उसमें से कुछ लाख लीटर अगर ये हाइड्रोजेल का उपयोग किया तो वो पकड़ लेगा जमीन के अंदर। एंड देन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, जब दो बारिश के बीच में बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया, जमीन सूख गई, मोर्टालिटी प्लांट की जो है वो मॉइस्चर स्ट्रेस प्लांट को पड़ रहा है, तब ये हाइड्रोजेल जो है वो धीरे धीरे मॉइस्चर जो है वो रिलीज करेगा रूट जोन में, और वो मॉइस्चर से ये जो प्लांट्स है, जो हमारी फसल है, वो आराम से वो जिंदा रह सकती है। तो हमने हमारे फील्ड में तकरीबन पिछले रबी की फसल में, रबी और समर की फसल में, चाहे वो बाजरा हो, मूंग हो और गेहूं हो, वहां पे हमने तकरीबन 1200 बीघा में, जो हमारे कॉरपोरेट पार्टनर है एलेम्बिक, उनके सहयोग से सारे किसानों को हमने टोटल 1200 बीघा में हाइड्रोजेल का जो है वो उपयोग करवाया था। और हमने ये जाना, जो हमने हमारे पास फील्ड के डेटा भी है, कि जो जहां पे जनरली किसान गेहूं में 5 पानी लेते थे, उनका 3 पानी में ही जो है वो गेहूं जो है बहुत ही अच्छे से ऊपर आ गया। ऐसे भी हमारे विस्तार है, जो आपने शायद पावागढ़ पर्वत का नाम सुना होगा, बड़ौदा के पास है पावागढ़, बहुत ही बड़ा वहां पे माता जी का मंदिर है, उसके बिल्कुल तलहटी के गांव, वहां पे पानी जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता नहीं है। तो वहां पे मूंग की फसल में एक किसान ने ऐसा भी अनुभव किया कि दो पानी के बीच में, दो सिंचाई के बीच में टोटल 27 दिन का गैप था, फिर भी उनकी फसल को मार्च महीने की, अप्रैल महीने की गर्मी में कुछ भी नहीं हुआ, हाइड्रोजेल ने बचा के रखा। तो इस साल हमारा जो ये प्लानिंग है कि हम हमारे जितने भी कॉरपोरेट पार्टनर्स है, ये हमारा एक प्रयोग था, और जो हाइड्रोजेल एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, पर किसानों को क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। पर हम इस बार हमारे टोटल 50 गांव से ऊपर, मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 5000 से 10000 बीघा में ये हाइड्रोजेल का जो है वो उपयोग करवाने वाला है। और अल नीनो की वजह से जो मॉइस्चर स्ट्रेस अगर पड़ता है हमारे किसानों की फसल में, चाहे वो कपास हो, अरहर हो, तो उसमें जो है बहुत ही ज्यादा जो हाइड्रोजेल है वो पानी की पूर्ति करेगा और फसल को बहुत ही ज्यादा बिगड़ने से बचाएगा हाइड्रोजेल।
इसमें एक बहुत अच्छा पहलू ये भी है भाइयों कि हम जो हाइड्रोजेल इस्तेमाल करवाते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, टोटली फ्रूट्स के छिलकों से बना है और उसको प्रोसेस करके पेटेंट ली है उदयपुर की जो महाराणा प्रताप एग्री यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है। और ये हाइड्रोजेल में करीब करीब माइक्रो न्यूट्रिशन, क्योंकि हर जो छिलके है उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन रहता है, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन से लेकर मैग्नीशियम से लेकर हर जो छोटी मोटी डिफिसिट है वो सब हाइड्रोजेल से मिल जाते हैं। और आज आप देखते हैं मार्केट में, अगर माइक्रो न्यूट्रिशन का 1 kg पैक लेने जाते हैं आप, तो 1 kg पैक इज अबाउट 1000 रुपया 1200 रुपया का मिलता है। इसमें ऑलमोस्ट 40% ऑर्गेनिक कंटेंट ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो ये फायदा है। हम आपको यहाँ एक और क्लियर कर देंगे जल्दी से कि हमारी तकलीफों की वजह है जमीन में कार्बन कम होना सबसे बड़ी तकलीफ, और दूसरी तकलीफ है जिसको नाइट्रोजन हवा में ज्यादा होना चाहिए उसको जमीन में देना। यानी हमने कार्बन और नाइट्रोजन को ऐसा इम्बेलेंस किया भाइयों, वजह सिर्फ एक ही थी, लोभ और लालच। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कृषि एवं ग्राम विकास में क्या करेगी? लेकिन परमात्मा कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अगर अज्ञान को दूर करे तो विश्व में हर जगह सुख और शांति आ सकती है। और अज्ञानता को दूर करने के लिए ही ऐसे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। भाइयों और बहनों, ऑर्गेनिक कार्बन अगर हम जो हवा में भेजते हैं, जिसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको अगर हम जमीन में डालें, उसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है हमारे पेड़, ट्री प्लांटेशन। और दूसरा, हम जो एक्सेस नाइट्रोजन देते हैं जैसे कि यूरिया, उसको अगर हम रिड्यूस करें तो डेफिनेटली, हम ये नहीं कहते इस्तेमाल ही मत करो, लेकिन यहां अगर यौगिक खेती को हम लेते हैं तो डेफिनेटली यूरिया को सामने, ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ यूरिया उसका भी ज्ञान है। यौगिक खेती के बारे में आप जरूर पढ़ना, यौगिक खेती ही सर्वांगीण विकास का आधार 101% बन सकती है। क्योंकि ये जो आप यहां सुन रहे हैं ना, ये हमारी दिमाग या हमारी पढ़ाई उसकी देन नहीं है भाइयों और बहनों। ये जब हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे वरभद्री विशाल भाई, आपने सुना, अभी सुनेंगे हमारे डॉक्टर पांडे जी को, हम सब सुबह जब बैठते हैं तो परमात्मा हमको टच करता है, क्योंकि हम उनके साथ योग करते हैं, और वो जो टच करता है उसको फिर हम लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आइडिया हम आपको दे रहे हैं ये परमात्मा देन है, और उस परमात्मा देन में भारत का श्रेष्ठतम स्टेज में पहुंचने का इशारा है। तो आइए देखें, वो भी बता सकते हैं कि गेहूं जो लॉजिंग होते थे वो भी बताओ।
एक और उदाहरण हमारा रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी का, हमने ये किया था कि हमारे कुछ ऐसे गांव जो मैंने कहा कि पावागढ़ पर्वत के नीचे हैं, वहां पे पिछले 2-3 साल से खास करके फरवरी और मार्च के महीने में बहुत ही तेज हवा चलती थी, और वहां का मुख्य जो फसल था वो था गेहूं। तो गेहूं में क्योंकि बहुत ही तेज हवा चलती थी तो लॉजिंग का बहुत, ऑलमोस्ट उनका 25-30% जो क्रॉप था वो गिर जाता था, और फिर वो हार्वेस्ट करने के लायक वो नहीं रहता था, हार्वेस्टिंग प्रोसेस के लायक नहीं रहता था। तो उसमें हमने वहां की जो कृषि यूनिवर्सिटी है, मतलब गुजरात की जो सबसे वीट के रिसर्च में जो सबसे आगे जो कृषि यूनिवर्सिटी है वो है दातीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी, कल जिनके महानुभाव आए भी हुए थे। तो हमने दातीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी के साथ कंसल्ट करके हमने एक ऐसी, उन्होंने हमें वेराइटी दी जो ड्वार्फ वेराइटी थी, वेराइटी का नाम था GW451, गुजरात वीट 451। तो वो ड्वार्फ वेराइटी थी, उसका जो बाली है, मतलब जो उसका जो दंठल होता है गेहूं का, वो 2 फीट से मैक्सिमम 2.5 फीट तक ही जाता है, उससे ज्यादा वो ऊंचा नहीं उठता। तो उसकी वजह से जब हमने वो करवाया तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, किसानों की बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन में है फर्क आया, क्योंकि पहले तो उनका जो 30% डैमेज है वो एक बिल्कुल कम हो गया, और सेकेंडली क्योंकि वो लोग जो हमने डायरेक्ट कृषि यूनिवर्सिटी से जो बीज उनको दिलाए थे, तो और वो फाउंडेशन सीड्स थे, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर सीड प्रोडक्शन किया, और आज की तारीख में वो सारे वही वैरायटी के खुद के जो है वो सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर से लेते तो डुप्लीकेसी का बहुत इश्यू आता है, जब वो खुद के इस्तेमाल करता है तो हमेशा उसका जर्मिनेशन और सारी चीजें वो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आपको हमारा ये जो है वो वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किसानों ने कैसे अपने गेहूं के फसल को क्लाइमेट प्रूफ किया नए बीज की वैरायटी से।
અત્યારે જે અમને એલએનડી તરફથી જે ઘઉં આપવામાં આવ્યા હતા GW 451, એ ઘઉં અત્યારે મેં નાખ્યા હતા તો મને એવું
ટેસ્ટિમોનિયલ ગુજરાતીમાં હોંગે પર આપકો સમજમાં આ જાયેંગે જિનકો ભી ગુજરાતી સમજમાં આતી ફિર ભી યે ટેસ્ટિમોનિયલ એસા હૈ કે આપકો સમજમાં આ જાયેંગે
કે આ ઘઉંને મેં પાડી દઉં હવે નહીં મજા આવે બહુ આછા પડી ગયા હતા અને પછી જયારે રહેવા દીધા તો અત્યારે ઘઉંમાં એટલો ગ્રોથ આવી ગયો છે કે જે મારા બાજુના જ ખેતરમાં બીજા ઘઉં મેં લોકવન કરેલા છે એમાં બે કટ્ટા વળ્યા છે અમારા ખાલી 20 કિલો ઘઉં વળેલા હતા મેં 100 વીઘામાં તો અત્યારે ફૂલ એકદમ સજ્જડ થઈ ગયા છે અને એકદમ ગ્રોથ આવી ગયો છે ઘઉંનો
અમે એક મનું આવ્યા ત્યારે બહુ આછા હતા એમ બહુ ગયા પછી બધા જોતા હતા કે નહીં થાય બરોબર એમ પછી બે પોણી વાર્યા પછી ઘઉં એવા નીકળ્યા કે મન રાજી થઈ જાય એમ ખેડૂતનું
એક બીજમાંથી અને 8 થી 12 એના ફૂટ મળે છે અને જે જૂના ઘઉં હતા અમારા બાજુમાં જોયા એને એક બીજમાંથી 3 થી 4 ફૂટ મળે છે એનાથી કારણે અમને લાગે છે કે ડુંડીને જોઈને કે વજન પણ સારું પકડાશે
આની હાઈટ નાની હોવાથી પાણી લેવામાં સરળતાથી થાય અને પવન આવે તો બગડતા પણ નથી ને આડા પડી નહીં જતા
અબ હમ બાત કરે એ ભી એક મેજર થા રિડ્યુસિંગ સેન્સિટિવિટી કે હમને કેસે ફસલ કી સેન્સિટિવિટી કમ કી કિસી ભી ક્લાઇમેટ ચેન્જ કે જો પ્રભાવ હૈ ઉસકી વજહ સે પર અગર હમ એડેપ્ટેશન કી બાત કરે ઇન્ક્રીઝિંગ એડેપ્ટેશન કી તો ઉસમે સિર્ફ એક હી ઉપાય હૈ વો હૈ યોગિક ખેતી ઓર વો હૈ જમીન કી સુધારણા કરના સોઇલ હેલ્થ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વહી વો સબસે બડા મધર ઓફ ઓલ એડેપ્ટેશન હૈ અગર કિસાન જો હૈ વો અપની જમીન સુધારે ઓર ઓર્ગેનિક કાર્બન કો કિસી એક લેવલ પે પહોંચા દે ઓર્ગેનિક નાઇટ્રોજન હૈ તો ઉસસે જો ક્રોપ હૈ વો ખુદ કી જો હૈ વો કેર કર લેગા તો પર એસા નહીં હૈ કે યોગિક ખેતી મેં ભી વિજ્ઞાન કી જરૂરત નહીં પડતી હમ મેં આપકો કુછ એક્ઝામ્પલ્સ એસે દિખાઉંગા કે જો ભી કિસાન યોગિક ખેતી કર રહે હૈ પ્રાકૃતિક ખેતી કર રહે હૈ ઉનકો ભી બહોત સારે ચેલેન્જીસ કા સામના કરના પડતા હૈ સબસે બડા ચેલેન્જ યે હૈ કે હમને હમે કિસાન યે કહેતે હૈ કે સાહેબ હમ ન્યુટ્રિશન મેનેજમેન્ટ ઓર પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ તો ચલિયે હમ બિના કેમિકલ ખાદ કી ઓર બિના દવાઈઓ કી ભી હમ કેસે ભી કરકે ખેતી કર લેંગે પર યે ખરપતવાર જો હૈ જો વીડ્સ હૈ ઉસકા હમ ક્યા કરેંગે ખરપતવાર કા આપ સબ ક્યુંકિ ઇસી ફિલ્ડ સે હૈ આપ સબ કિસાનો કે સાથ આપ મેં સે કુછ કિસાન હૈ ઓર કુછ કિસાનો કે સાથ બહોત હી અંગત વે મેં કામ કર રહે હોંગે તો આપકો પતા હોગા કે વીડ મેનેજમેન્ટ અભી સબસે બડા ઇશ્યુ હૈ તો ઉસકે અંતર્ગત હમને વિજ્ઞાન કા ઉપયોગ કિયા હમ હમેશા કિસાન કો યે કહેતા હૈ કે સબસે પહેલે જબ કિસાનો કી સભા હોતી હૈ તો હમ પૂછતે હૈ કે આપકે ઘર મેં જો પોછા જો લગતા હૈ વો બેઠ કે લગાતે હૈ યા સબકે ઘર મેં અબ ખડે ખડે લગાને વાલે પોછે આ ગયે હૈ તો સબ કિસાન ભલે કિતના ભી પિછાત ગાવ હો વો કહેંગે કે હમારે ઘર મેં જો હૈ વો ખડે લગાને વાલે પોછે આ ગયે તો અબ હમ ઉનકો કહેતા હૈ કે તો ફિર એસા ક્યું હૈ કે આપ અભી ભી ખરપતવાર હટાના જો હૈ વો બેઠ કે હાસિયા સે હી લગા રહે હૈ અગર અગર 30 સાલ પહેલે હમ કિસી ભી ગાંવ મેં જાય તો આજ આજ સે 30 સાલ પહેલે ઉસ ગાંવ વો પૂરા અલગ થા વહાં પે નહીં ટેલિફોન થે નહીં ટુ વ્હીલર થે નહીં મોટરસાઇકલ થી પર આજ હરેક ઘર મેં મોટરસાઇકલ હૈ આજ હરેક ઘર મેં ટેલિફોન હૈ સ્માર્ટફોન સબકે પાસ હૈ તો ગાંવ મેં ભી નહીં નહીં ટેકનોલોજી કો એડપ્ટ કિયા હૈ પર અગર હમ વહી ચીજ હમ એગ્રીકલ્ચર મેં દેખે તો આજ ભી વહી ખુલે પાણી દેને ફ્લડ ઇરિગેશન કી જો 200-300 સાલ પુરાની જો રીત હૈ આજ ભી વહી ચલી આ રહી હૈ હાસિયા જો 400-500 સાલ પુરાના જો ટેકનોલોજી હૈ વો ભી આજ હી ચલી આ રહી હૈ ઉસમે કોઈ બદલાવ નહીં હૈ પર હમ હમારે પ્રોજેક્ટ મેં હમને ઉસમે ભી બદલાવ લાયા આપ ઇમેજિન કરીએ કે એસા એક હાસિયા જે આપ ખડે ખડે આપ અપની ફસલ કાઢ સકતે ઓર વો ભી હાર્વેસ્ટર જીતની સ્પીડ સે એ સિર્ફ એક આદમી સિર્ફ એક મજદૂર એક દિન મેં એક એકર તક કી કટાઈ કર સકતા હૈ ચાહે વો ધાન હો ગેહું હો કોઈ ભી ફસલ ઓર સિર્ફ દો આદમી એક એકર મેં એક હી દિન મેં અગર સુબહ સે શામ કરે તો પૂરા જો હૈ વીડિંગ પ્રોસેસ વો કમ્પ્લીટ કર સકતે વો ભી બિના ઝુકે ના હી વો સ્ક્વોટ પોઝિશન મેં ના હી બેઠના ના હી અપની બેક જો હૈ ઉસકો બેન્ડ કરના પૂરા ખડે ખડે વો ભી એકદમ હાઈલી એફિશિયન્ટ મેનર મેં તો વો મેં આપકો થોડા ઝલક દિખાઉંગા કે કેસે હમને વિજ્ઞાન કા ઉપયોગ કિયા યોગિક ખેતી મેં ટુ રિડ્યુસ ધ એમાઉન્ટ ઓફ હર્બિસાઇડ્સ એન્ડ વીડિસાઇડ્સ ઇન ધ ફિલ્ડ તાકી વો સોઇલ હેલ્થ કો જો હૈ વો ડેમેજ ના કરે અભી સબસે બડા એક ઓર ઇશ્યુ આ રહા હૈ કિસાની મેં વો હૈ મજદૂર કી અવેબિલિટી ખાસ કરકે ગુજરાત મેં ગુજરાત મેં તો મજદૂર કી અવેબિલિટી ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ઇશ્યુ તો ઉસમે હમ કિસાનો કે પાસ ઓર કોઈ ચારા હી નહીં બચા કે વો કેમિકલ કા રાઉન્ડઅપ કા ઓર વો સબ સ્પ્રે કરે અપના ખરપતવાર હટાને કે લિયે પર યે જો હમને જો ટૂલ્સ દિયે જીજે કિસાનો કો આજ વો સબને જો હૈ રાઉન્ડઅપ કા ઉપયોગ કરના બંધ કર દિયા હૈ ઓર ઇસ ટૂલ કી વજહ સે વો મજદૂરો કે પાસ ભી આધે સે કમ કિંમત મેં ભી અપની જો હૈ બિડિંગ પ્રોસેસ વો કરવા રહે હૈ
કેમિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન્સ યે દેખિયે
યે સાઇથ હૈ સાઇથ ઇઝ અ હાર્વેસ્ટિંગ ટૂલ बेसिकली हाथी आई है पर ऐसा डिजाइन किया है जो कोई भी इंसान खड़े खड़े जो है फसल काट सकता है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, हर कोई वो खड़े खड़े काट सकता है। और ये हैंड वीडर है, खड़े खड़े वीडिंग भी आप, भले वो कुछ एमएम की छोटी सी घास हो, वो भी हम जो है उसकी वीडिंग बहुत ही अच्छे से इजीली कर सकते हैं। ये किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे प्रोजेक्ट में कि कैसे उसका उपयोग करना है एक डेमो प्लॉट में। तो इससे किसान को क्या फायदा हो रहा है, सॉइल को क्या फायदा हो रहा है कि जब कंबाइन हार्वेस्टर आता है तो नीचे की जो पराली होती है उसको तो नहीं, सिर्फ ऊपर के जो लगा हुआ था धान या गेहूं उसी को काट के जाता है, नीचे को तो हार्वेस्ट नहीं करता।
एक महीना थी
तो वो किसान फिर अल्टीमेटली उसको जला देता है क्योंकि वो पैसा लगाना नहीं चाहते कि उसको फिर से ट्रैक्टर लगा के लैंड प्रिपेयर करे, तो उसको जला देते। तो उसमें भी सॉइल में काफी डैमेज होता है, माइक्रोबियल जो हमारा बायोकल्चर होता है उसको भी काफी डैमेज होता है बायोडाइवर्सिटी को। पर ये हासिए से साइड से आप नीचे से काट सकते हैं तो उनको चारा भी मिलता है एंड जलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
मजदूर ओछा मजदूर हो, मजदूर ना मिलता हो तो जाते ओछा खर्चा कई रीतना आप निंदामण दूर कर सकिए, तो એના માટે પણ સરસ માહિતી આપેલી છે। તો આ બધા સાધનો ઉપયોગ
આપ દેખ સકતે યહાં પે 10 મજદૂર જો હૈ વો એક બીઘે કી કટાઈ કર રહે હૈ ઓર ઉસી કે સામને હમારા કિસાન સાઇથ યુઝ કરકે વો કિતની સિર્ફ 10 મિનિટ કા ઉસને કિતના કટાઈ કર દી હૈ વો આપ દેખ પાએંગે।
આમ જે સાધન થી અમને ઘણો અને બધી વાતે અનુકૂળ લાગે છે, લાંબા સમય અમારે કોઈ બહુ મજૂર ની જરૂર પડવાની નથી। આ અમારે
અકેલે કિસાન ને કટાઈ કરી છે,
આવી કોમ મસ્ત લાગે છે આ સાધન અમારું
દાતેડા
ઠીક હે। ઇવન ઇસમે એજેડ યાને 85 પ્લસ કે કિસાન અગર ચલ પા રહા હે 75-80 વો ભી ઇસ ટેકનોલોજી સે અપને ખેત મે કુછ કામ કર સકતા હે। તો યે સબ
તમે ઇસકે ઉપર પ્લે કર રહે
હો? નહીં નહીં, યુ સ્ટોપ નો। તો કહેતે હે કે एक और भी टेक्नोलॉजी है जिसको हमने इम्प्लीमेंट कराया, क्योंकि हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण तो है लेकिन अर्जुन बने, क्योंकि अब जीवन में इम्प्लीमेंटेशन का बहुत महत्व है। सलाह देना, सजेशंस देना, किसी को अपनी ज्ञान बताना, ये बहुत सहज है, लेकिन उसको अर्जुन की तरह उसको लागू करना, इसमें चैलेंजेस है। और अभी कुछ हमारे साइंटिस्ट कह रहे थे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत वीक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, इतनी कमजोर है, रिसर्च बहुत है, सब कुछ है, लेकिन एक्सटेंशन, और हम लोग ने ये कमजोर कड़ी को पकड़ा। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, अभी परसों ही हमारे परमात्मा के गॉडली वर्शंस थे कि आप सेवाओं के लिए, दुनिया में लोग बहुत दुखी है, उसकी सेवाओं के लिए नवीन उपाय कीजिए, नवीन तरीके खोजिए। तो ये जो तरीका है हमारा वो एक सेवा भाव के लिए है। वैसे ही हम लोग नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो सेवा कैसे की जाए। आप सब लोगों में से भी आने वाले 2 साल में, हमारी प्रियंका बहन है वो कर रही है कच्छ में, आप में से बहुत सारे आने वाले समय में तैयार हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी लास्ट आपको दिखा रहे हैं वीडियो और फिर हम समापन करेंगे हमारे वक्तव्य को, कि गांव में अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें, अमेरिका कहता है भारत वालों तुम लोग गोबर को निकाल के ढेर रखते हो रास्ते के आजू बाजू में, और वो जो गोबर है भारत देश का उसमें से जो मीथेन निकलता है वो ऐसा ऐसा काम करता है, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में भी आपका जो गोबर का ढेर है वो बहुत तकलीफ दे रहा है, और उनके पास साइंटिफिक एविडेंस भी है। क्योंकि हमारे किसान के पास कंपोस्टिंग की कुछ प्रोसेस है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी बनाई है, लेकिन कोई किसान इम्प्लीमेंट नहीं करता। सुबह में जो किया वो उसका ढेर लगा दिया, लेकिन आप देखिए कि उसको कैसे अर्जुन की तरह सबको करवाया बहुत ही कम समय में। आज भारत देश की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि किसान कंपोस्ट को सिर्फ बरसात से पहले अपने खेत में डालता है, क्योंकि वो सोचता है कि एक साल तो कम से कम लगता है कंपोस्टिंग होने में और उसमें कोई साइंटिफिक प्रोसेस भी नहीं होती। लेकिन क्या मैं रबी में समर में कंपोस्ट यूज कर सकता हूं? कर सकते हो अगर ये प्रोसेस से करें। जानते हैं हमारे डॉक्टर सुनीता पांडे जी भी उसमें काफी एनलाइटेंड है कि माइकोराइजा युक्त फोर्टिफाइड कंपोस्टिंग कैसे किए करते हैं। तो आप देखिए यहाँ एक छोटा सा वीडियो, पूरे गांव के गांव हमने ये देखिए इस तरीके से हिप्स रहते हैं। ये हर गांव की समस्या है। स्वच्छता की बात करें, लेकिन वैसे तो कहो तो जलवायु परिवर्तन में भी ये इसका योगदान है। लेकिन यहाँ ये जैसे हम हर बायो कल्चर पुणाप जल या कुछ भी, सिर्फ थोड़ा सा एनएरबी अलाउ किया, 30 दिन में देखिए रिजल्ट।
અમે એલએમઈ સીએસએ ફાઉન્ડેશન તરફથી ગઈ 1 ઓગસ્ટે અમે આ ઉકેડામાં ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હતી કોવડાવા માટે।
તો એ જે તમે
જોઈ રહ્યા છો કે એકદમ કોવાઈ ગયું છે આ વસ્તુ, અમે જે આખું વર્ષ અમે ઉકેડ।
તો ઇસમે ઇસ તરીકે સે ગાંવો કે ગાંવો મે હમારે પાસ અભી કરીબ 80 ગાંવ હે જિસકો મે ઇસમે સેવા દે રહે। તો જળવાયુ પરિવર્તન કો લેકર ઓર યે ઉસમે એક फाइनल पहलू बताते हैं कि हमारे किसानों के संगठन हमने बनाए हैं, जिसमें हमने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक क्वोशंट को यूज किया ताकि आपसी भाईचारा बढ़े, एक दूसरे के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट ना रहे, आपस में विश्वास रहे। और उसका फिर हमने यूनाइटेड सोर्सिंग ऑफ सीड्स इनपुट्स और यूनाइटेड मार्केटिंग में यूज किया। जो पैडी यानी धान था वो 330 से 350 पर 20 केजी उनको मिलता था, उसके सामने उसको छोटा सा प्रिलिमिनरी वैल्यू एडिशन करा के 700 प्लस रेट पिछले 2 साल से दिला रहे, हर फसल का अच्छा रेट भी दिलाते हैं। तो खेती और किसान को एक आशा जन्मी है, उमंग उत्साह आया है। आप सब लोगों को मौका मिले जिसको भी तो आप जरूर आ सकते हैं हमें बात करके, हम आपको उन सब किसानों से मिलवा सकते हैं। समय यही कहता है कि अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों अगर मिल जाए तो जलवायु तो क्या, हर किसी समस्या में परमात्मा हमारे साथ है। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ऊर्जा, मेटाफिजिकल एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले समय में। इसीलिए आप सब लोगों को तहे दिल से अभिनंदन भी देता हूं और शुक्रिया भी करता हूं यहां आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक यू भाई जी। सत्र के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उसको क्लियर करेंगे। समय की सुइयां दौड़ रही है और बहुत सुंदर रीति से पिता पुत्र की जुगलबंदी ने हमें, चाहे वैश्विक समस्या हो या मानसिक समस्या हो, किस प्रकार से विज्ञान और अध्यात्म के जोड़ से हम सबको पीछे छोड़ सकते हैं, ये समझाया है। इनकी बातों से यही समझ में आया कि हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर सांझ के बाद सवेरा होता है। यूं ही मुसीबतों में हिम्मत हार जाते हैं लोग, परंतु मुसीबतों के बाद ही सुख का डेरा होता है। तो हमें उन सुखों को अनुभव करने के लिए स्वयं की ताकत को बढ़ाना है और साथ साथ वैश्विक समस्याओं से भी निपटना है। ये बहुत सहज शब्दों में आपने हमें सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी और कहे कि एक ऐसा विशाल दरख्त जिनके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने न केवल सुकून की छाया परंतु अपने आप को अनुभवी बनाया, ऐसी हमारी आदरणीय अनुभवी डॉक्टर सुनीता पांडे जी हमारे बीच में हैं। आप जी भी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंत नगर से वर्तमान समय में हमारे बीच आई है और आपका अनुभव ही आपकी पहचान है। आपने विशेष रूप से अनेकों एमएससी स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को भी अपने अनुभवों से इस प्रकार से तैयार किया है कि वो भी अपने जीवन से अनेकों को जीवन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसी हमारी डॉक्टर सुनीता पांडे जी को हम सभी आज के विषय पर सुनना चाहेंगे। डॉक्टर सुनीता पांडे जी।
ओम शांति। मंच पर विराजमान आज के इस सत्र यौगिक कृषि द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निदान सत्र की अध्यक्षा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी, जोनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग दिल्ली। आज के सत्र के मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार राजेश दवे जी, वक्ता ब्रह्मा कुमार महर्षि दवे जी, आज के अतिथि भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया जी, हमारे मध्य मंच संचालन कर रही ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन जी और इस सभा में उपस्थित मेरे अति प्रिय भाई और बहनें। आज का विषय है कि यौगिक कृषि के द्वारा हम जो ये जलवायु परिवर्तन जो सुबह से कल से हम लगातार इस शब्द को सुन रहे हैं, और जैसे राजेश भाई जी ने बताया कि विश्व के मंच पर अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज किसी विषय विशेष की है तो आतंकवाद तो है ही, परंतु जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन भी एक आतंक का ही रूप ले चुका है लगभग। लेकिन ये आतंक जो बाहर, अगर हम जलवायु परिवर्तन का आतंक देखें तो ये बाहर अपने आप नहीं होता, ये पहले हमारी मंशा में होता है। हमारा कुछ ऐसा आचरण रहा होता है, हमारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, संकल्प, सबसे पहले संकल्प होते हैं, उपद्रवी संकल्प, जिनसे हमारा उस प्रकार का आचरण और प्रैक्टिसेस बनती हैं जिसका रिफ्लेक्शन बाहर में हमें दिखाई देता है। क्योंकि प्रकृति जैसी भी हमें जब जब प्रकृति, जैसे एक कल्प देखें, स्वर्णिम युग, उसके बाद हमारा जो त्रेता युग, फिर द्वापर कलयुग, या इस प्रकार जो गिरावट हुई उसमें अगर हम एक मास कॉन्शियसनेस देखें तो उसमें भी उसी प्रकार गिरावट होती है, और प्रकृति का स्वरूप देखें तो जिस प्रकार की मास कॉन्शियसनेस होती है वो रिफ्लेक्शन उसको प्रकृति करती है कि अंदर क्या चल रहा है दुनिया के। तो हमारे अंदर भी एक मास कॉन्शियसनेस का जो इस समय ऊपर नीचे है, जो आतंक है या जो परिवर्तन अब हम देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन आज जलवायु परिवर्तन है। तो वो योग से ही उसको हम निदान कर सकते हैं। उस जलवायु परिवर्तन का अगर कोई उपाय है तो वो है हमारे आचरण में परिवर्तन, हमारी जीवन पद्धति में परिवर्तन, और उसके लिए हमारे संकल्पों में परिवर्तन, और वो यौगिक खेती के द्वारा संभव है। खेती तो खैर करते ही हैं, परंतु जब हम उस प्रकार से संकल्प परिवर्तन, प्रैक्टिसेस परिवर्तन और आचरण में उन चीजों को लाके करने लगेंगे तो वो संभव होगा। तो जो मुख्य मुख्य चुनौतियां आज हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, कि जैसे बहन ने कहा धरती को बुखार आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग, यूनाइटेड नेचर की हम बात करते हैं, जैसे जो बाहर नेचर है पंच महाभूत का, वही नेचर हमारा शरीर और सभी पशु पंक्षियों सभी का, जानवरों का, सभी का शरीर जो पंच महाभूत से बना है, तो वहां भी अगर ऊपर नीचे टेम्परेचर होता है तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो उसी प्रकार बाहर जब टेम्परेचर होगा ऊपर नीचे तो एक परेशानी का सबब है, ये हमको कम करना है। उसकी वजह से जो आइस मेल्टिंग या सी वाटर लेवल ऊपर हो रहा है उसका समाधान, उसको कम करना है। इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा इमिशन है, उसको हमें कम करना है। उसके लिए हमें अपने आचरण और लाइफ स्टाइल हमें देखनी है कि कैसे वो कम होगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, ये चुनौतियों में गिना रही हूँ, उसको हमें अपने आचरण और अपनी लाइफ स्टाइल से वो हमें बढ़ानी है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो रहा है, उसको हमको बढ़ाना है। भूमि में कार्बन को हम बंदिश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कार्बन उड़ता है। जैसे ही हम ट्रैक्टर भी एक बार छोड़ते हैं ना खेत में, तो हमें एहसास नहीं होता कितना कार्बन जल जाता है। इसीलिए मिनिमम टिलेज या जीरो टिलेज की बात होती है। एक बार ट्रैक्टर चलाने का मतलब कि बहुत सारा कार्बन जला दिया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन हवा में उड़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन से, जैसे कल बहुत अच्छी बात ब्रजमोहन भाई साहब कह रहे थे कि सब कुछ नए से पुराना हो चुका है। तो अभी पुराने से नया, तो भाई साहब ने कहा पुराने से नया कैसे होगा। तो हमें जो आज का प्रोग्राम है ना, जो हमारे यहाँ पर संकल्पों का, जिससे हमने कहा संकल्पों से सृष्टि, सृष्टि संकल्पों से ही बनती, वो पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, कंप्लीट फॉर्मेट। और वो केवल योग से होता है। वहीं पर हमारी यौगिक खेती का इम्पोर्टेंस है। वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पर जो प्रोग्राम, क्योंकि हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि का जो प्रोग्राम हमारे अंदर अभी फीड है, वो ऑल टुगेदर आमूल चूल परिवर्तन उसमें करने होंगे। ये कोई एक मासी का घर या कोई साधारण बात नहीं है, संस्कार परिवर्तन। इसमें परमात्म शक्तियों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं शक्तियों को हार्वेस्ट करके और लोगों को बांट करके दे करके अपना तो फॉर्मेट करेंगे, उसी को हम यौगिक कहते हैं। और जब हम उस परिवर्तन के बाद खेती करते हैं, तो वो होती है शाश्वत यौगिक खेती। तो शाश्वत यौगिक खेती जब हम करेंगे पूरा संस्कार परिवर्तन करने के बाद, तो हमारा सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो हमारा होगा किसान पुनः अन्नदाता, स्वमान, किसान का स्वमान जगाना, उसको सम्मान की फीलिंग हो, वो उसी प्रकार से अन्नदाता की श्रेणी में आए। आज किसान को देखो, कभी यहां आंदोलन, वो अन्नदाता जिसका कि राजा सबसे ज्यादा ख्याल करता था। रामायण में भी उसकी पंक्तियां हैं कि राम पूछते थे भरत से कि सब कुछ किसानों के लिए अरेंज कर दिया, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसान को दी जाती थी। तो वो उसको उस अन्नदाता की श्रेणी। और आज हम किसानों की हालत देखें, कभी इस सड़क पर आंदोलन, कभी उस सड़क पर आंदोलन, कभी भूख हड़ताल, तो कभी सुसाइड। तो आप तुलना कीजिए कि किसान कहां से कहां आ गया। तो पहला परिवर्तन जब स्वमान जागेगा, जब सम्मान जागेगा, और वो फिर से वहां पर योग की आवश्यकता है, यौगिक कृषि की आवश्यकता है, तो वो सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। और जब वो परिवर्तन आएगा, तो जो हमारी कृषि थी गौ कृषि वाणिज्यम, जिसके आधार पर हमारा जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जिसके कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे विश्व में, 34-35% था, और जो आजादी तक आते आते 1.7 या कितना बहुत थोड़ा सा रह गया, तो वो गौ कृषि वाणिज्यम और सम्मान से, कृषि के कृषक के सम्मान और स्वमान से वो स्वतः आगे बढ़ेगा। जैसे कल कुलकर्णी भाई साहब जी ने भी बताया, और ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा देश कभी भी कृषि प्रधान नहीं था, वो बना दिया था वेस्टर्नर्स ने, उसको उद्योग से कट कर दिया गया था। हम कृषि एवं उद्योग प्रधान देश थे। कृषि के करने वाले लोग आज की संख्या में शायद ज्यादा होंगे, परंतु हर एक उद्योग से जुड़ा था, छोटे 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 हर हाथ को काम था, उद्योग था, निर्यात था, जबरदस्त निर्यात था, कपड़ों का निर्यात, कॉटन का निर्यात, मसालों का निर्यात, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का निर्यात, जूट का निर्यात, चीनी का निर्यात। तो जहां इतनी 10 से ज्यादा निर्यात अगर हम देखें, ऐसी इंडस्ट्री थी पूरी, तो और वो सारी कृषि आधारित, तो ऐसे देश की कृषि पद्धति कितनी उन्नत रही होगी, जहां की सारा का सारा एक्सपोर्ट कृषि आधारित था। तो ऐसे हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वो परिवर्तन केवल तब आएगा जब हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन को जीने की पद्धति में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन लाए बिना वो खेती, और वो आचरण में आएगा, खाली कहने सुनने से नहीं। जैसे राजेश भाई ने बताया कि केवल अभी वो अर्जुन बनना है, उसको आचरण में लाना है। तो आचरण और प्रैक्टिसेस में लाने के लिए हमें वो करना पड़ेगा और तभी हम जो भारत का एक संस्कार रहा है अन्नम बहु कुर्वेत, माने यहाँ का संस्कार था कि खूब अन्न पैदा करो और बांट करके खाओ, ये संस्कार था। और आपको मैं कुछ डेटा बताऊं, चावल का उत्पादकता यहां पर कुछ भाई अगर बैठे हो, चेंगलपट्टू जिले में, चेंगलपट्टू जिले में और एक रामनाथपुरम एक जिला है जहां की वर्षा बहुत कम होती है, रामनाथपुरम एक जिला है और तिरुवनंतपुरम में और उसके अलावा और भी जगह में हमारे चावल की उत्पादकता 110, 120, 130 और मैक्सिमम 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमने भारतवर्ष ने उत्पादन किया है और उसका डेटा पब्लिश है। कोई ये हवा की हवाई की बातें नहीं है, आज भी आपको किताबें मिलेंगी और विदेशियों की लिखी हुई किताबें मिलेंगी जो यहां पर कालांतर में होके गए और इंडियंस की भी मिलेंगी जिसमें ये डेटा पब्लिश है कि हमारे पास धान की ऐसी ऐसी किस्में थी। अभी भाई ने वो बताया कि धान ये जो गोबर का, मैंने कृषि के इतिहास को पूरी तरह से खंगाला है, पूरी हेरिटेज का अध्ययन किया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपोस्टिंग करने का रिवाज हमारे भारतवर्ष का हेरिटेज बताता ही नहीं है। किसी भी हेरिटेज की किताब को आप उठा के देख लें, 1300, 1200, 1400, 1100, 1000 बरस पहले कभी भी गोबर की कंपोस्टिंग नहीं करते थे। ये कंपोस्टिंग अल्बर्ट हार्वर्ड के आने के बाद ये गोबर की कंपोस्टिंग, और जिसको फिर अब वो ये कहते हैं कि भारतवर्ष में इमिशन होता है गोबर कंपोस्टिंग करने से और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये हमारा ज्ञान आप सोचिए कितना गहन होगा। गोबर को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता था हमारे हेरिटेज के अनुसार, एक तो गोबर को सुखा देते थे और सुखाने के बाद गड्ढे खोद के उनको रख देते थे और उसके बाद उसको यूज करते थे, एयर ड्राई करते थे छाया में सुखा करके और उसको रख देते थे। दूसरा था कि जो हम फर्मेंटेड फर्टिलाइजर्स, जो आजकल हम लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर बना रहे, ऐसे लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर 1000 बरस पहले ऋषि सुरपाल द्वारा बताया गया, बनाया गया, टेस्ट किया गया और उसको उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद की किताब में, वो आज भी बंदिश्त है, उसको कहते थे कुणाप जल, वो उन्होंने 1000 बरस पहले। तो ये बायो फर्टिलाइजर, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन होना चाहिए? ऋषि सुरपाल का नाम कहां चला गया? अल्बर्ट हार्वर्ड ने तो कंपोस्ट बनवाया, इंदौर मेथड बताया, नाडेप मेथड बताया, तो वो इंदौर में उन्होंने रहे और उन्होंने काम किया। मैं उनके काम को अदरवाइज नहीं कह रही हूं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और उन्होंने एक किताब लिखी 1940 में पब्लिश करी, उसका नाम है एग्रीकल्चर टेस्टामेंट। उसके हर एक पन्ने पर उन्होंने भारतीय कृषि की तारीफ की, उनको भेजा गया था भारत में स्टडी करो और देखो कि इनकी कृषि को कैसे सुधारा जाए। वो कहते उनका रिफ्लेक्शन ये है उस किताब में कि भारतवर्ष में तो उच्चतम दर्जे की कृषि हो रही है, उन्नत कृषि हो रही है और ऐसी कृषि हमको सीखनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर टेस्टामेंट पढ़ के देखिए। तो उन्होंने उनको फिर जब उन्होंने वो किताब निकाल दी तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर और दादा और परदादा तो हमारे यहां बसते हैं, ऋषि सुरपाल है, ऋषि कश्यप हैं, ऋषि वारामिरा हैं, सबने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। और ये इतनी हाई उत्पादकता 200 क्विंटल पर हेक्टेयर, और आज हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी अगर आप धान की देखें तो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर 25-30 क्विंटल पर हेक्टेयर, 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर मैक्सिमम, अगर एवरेज देखें तो 25, वैसे देखा ऊपर नीचे करके अलग अलग प्रदेशों में तो 30 एवरेज प्रोडक्टिविटी, और हमने हार्वेस्ट करी है 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक, जो डाटा हमारे पास आज उपलब्ध है, हमारे लिखे हमारे राइटर्स के द्वारा भी और विदेशों राइटर्स के द्वारा भी। तो ऐसे समय में ये सब जो लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड्स, आप वृक्षायुर्वेद को उठा के देखें, उसमें जो पौधों के ट्रीटमेंट का तरीका है, चाहे वो इंसेक्ट है या पेस्ट है या वायरस है, इवन वायरस को ट्रीटमेंट का तरीका है, उसका आधार आयुर्वेद है। क्योंकि जो आज हम कह रहे हैं वन हेल्थ का कंसेप्ट, हम वन हेल्थ का कंसेप्ट कह रहे हैं ना कि हमारी, तो वन हेल्थ का कंसेप्ट क्या है कि हमारी भूमि बलवान तो हमारी फसल बलवान तो हमारे जानवर बलवान तो हम बलवान। मतलब कि अगर हमें सबकी हेल्थ अच्छी चाहिए तो हमारी भूमि की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही किया, भूमि को उन्होंने बलवान बनाया। और साथ में जो यौगिक वाली बात है, भूमि की पूजा, हल की पूजा, बैल की पूजा, उपकरणों की पूजा है ना, जितने ये उसमें उपकरण यूज होते थे सबकी पूजा, पानी की पूजा, पंच महाभूतों की पूजा, तो पूजा से मतलब है उनका रेस्पेक्ट, उनका सम्मान, उनको वो ये यौगिक खेती है कि आप अच्छा उसको वाइब्रेशन करें। यौगिक खेती कोई ऐसी क्लिष्ट चीज नहीं, अभी राजेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो ये केवल हमें, और फिर इस विश्वविद्यालय ने कोई नई चीज भी नहीं करी, इस विश्वविद्यालय ने केवल जो हमारा प्राचीन भारत का प्राचीनतम ज्ञान, जो योग की स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, कनेक्शन, उन पावर्स को अपने अंदर भरना, उसको प्रकृति को देना, क्योंकि प्रकृति की कॉन्शियसनेस हमारी कॉन्शियसनेस से नीचे है। तो वहां पर एक फॉर्मूला काम करता है, ग्रेडियंट का लॉ ऑफ रिलेटिविटी, कि वो जब हमारा संकल्प प्रकृति पढ़ती है, और ये आचार्य जगदीश चंद बसु ने प्रूफ किया, और न केवल उन्होंने किया, विदेशों में बहुत काम हुआ है। मैंने इसका एक पूरा रिव्यू पेपर, आपको कहीं गूगल में मिल भी जाएगा, एक बार ही पूसा में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने रिव्यू पेपर प्रस्तुत किया था कि जहां पर मेटाफिजिकल एनर्जी से साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी, तो उसके लिए परमात्मा की एक्चुअल पहचान हो, अपनी एक्चुअल पहचान हो कि मैं इस शरीर का मालिक एक एनर्जी हूं और वो सुप्रीम एनर्जी है। तो कनेक्ट करके वो प्रकृति को इंटेंशंस देना, प्रकृति हमारे इंटेंशंस को पढ़ती है, और न केवल पढ़ती है, उसको याद रखती है, और न केवल याद रखती है, उसका प्रत्युत्तर देती है, जो कि आज हम प्रकृति का प्रत्युत्तर देख रहे हैं। ये सब हमारे संकल्पों की रचना है, जो आज प्रकृति में परिवर्तन और जो उपद्रव बाहर मचा हुआ है। तो हमें वो ही यौगिक खेती है, और बाकी जो प्रकृति के नियम है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रैक्टिस में, आचरण में ला करके, है ना, जो ये पूजा बताई या मल्चिंग का उपयोग, ये सब हमारे वृक्षायुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमारे हमारी भूमि का तापमान न बढ़े। कश्यप ऋषि ने कश्यप या कृषि सूक्ति में इसको लिखा हुआ है कि भूमि को ढक के रखो, हमारी माता है उसको ढक के रखो तो टेम्परेचर बढ़े ना, और उसके 100 से ज्यादा फायदे हैं मल्चिंग के, है ना। और फर्मेंटेड फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, वृक्ष आयुर्वेद को उठा के तो देखिए, प्लांट प्रोटेक्शन का वृक्ष आयुर्वेद, माना कि आयुर्वेद का कृषि में एप्लीकेशन, वृक्षों में एप्लीकेशन, तो वो कहलाता है वृक्ष आयुर्वेद। तो उसमें वात, पित्त और कफ आधार हैं प्लांट की बीमारियों में को, वो कौन सी बीमारियां होंगी, उसके क्या लक्षण होंगे, उसका क्या कारण होगा, उसका क्या निवारण होगा। आज तक किसी प्लांट पैथोलॉजिस्ट को फुर्सत है उन पन्नों को देखने की कि हमारे पौधे की बीमारियों का आधार भी वात, पित्त, कफ है। मैं डॉक्टर वाईएल नैने को हर मंच से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। उन्होंने पूरी कमेंट्री की है इसके ऊपर, वृक्ष आयुर्वेद के ऊपर, और खास प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर, पौध सुरक्षा के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने वात, पित्त और कफ का आधार, सेकंड वो त्रिदोष का बैलेंस, वो पौधों पर भी लागू होता है, वन हेल्थ, वहीं से वन हेल्थ भी आ जाती है। और तीसरा, वो कौन से ऐसे पौधे हैं, बायो पेस्टिसाइड की जब हम बात करते हैं, कि जिससे हम सारी प्रकार की बीमारियां, चाहे वो फंगस से जनरेटेड हो, चाहे वो वायरस से जनरेटेड हो, है ना, तो वो कौन से पौधे हैं, वो कौन से पौधे हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, फंजिसाइडल प्रॉपर्टी है, निमेटिसाइडल प्रॉपर्टी है, वायरस को खत्म करने की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे पौधे चिन्हित हैं, और उनकी विधियां हैं उनको कैसे उसका कॉन्कॉक्शन बना के पौधे को यूज करें। तो उन सबका वैलिडेशन होना, और ये जो नेचुरल फार्मिंग का सिलेबस बनाया है, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि पता नहीं किस प्रकार से मैं उस कमेटी में आई, और मैंने वो सारा ये वृक्ष आयुर्वेद को उसमें डवटेल का अपने लेवल पर किया है, उसमें यौगिक खेती का भी वर्णन है, और उसमें ये सारा वृक्ष आयुर्वेद पहला पहला चैप्टर ओपनिंग उसकी इसी से है, अवर ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ भारत। तो उसमें ये सारी बातें, और सारे डिसिप्लिन थे, बस नाम फर्क थे। जैसे बीजोक्ति विधि, भूमि निरूपणम, तो अलग अलग नाम थे, संस्कृत में था पूरा वो। और अभी तो आज खुशी की बात है कि वृक्ष आयुर्वेद के तमाम ऋषि मुनियों ने समय और काल पर, जगह पर, अलग अलग जगह पर वृक्ष आयुर्वेद को लिखा है। वो सारी प्रतियां हमारे पास आज हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, मराठी में भी उपलब्ध हैं, क्योंकि डॉक्टर नैने मराठी महाराष्ट्र के थे, तो उन्होंने मराठी में भी कराया। और उनका एक संकल्प था कि हर रीजनल भाषा में हो, ताकि इन वैज्ञानिकों को अगर फुर्सत नहीं हो तो कम से कम किसान तो डायरेक्ट इसका फायदा ले सके। तो वो सारी किताबें उपलब्ध हैं पंतनगर विश्वविद्यालय में। वो जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन का मुख्यालय है वो वहां पर है, पहले सिकंदराबाद में था, तो अभी वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नैने के शरीर छोड़ने के बाद वहां है। तो आप सभी भी वो पढ़ सकते हैं ज्ञान को, और हमने तो उसको अभी अपना रिसर्च डोमेन बनाया ही है, और कई विश्वविद्यालयों में अब थोड़ा सा इमर्ज हो रही हैं चीजें। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन लाने पड़ेंगे, इसलिए लाने पड़ेंगे क्योंकि भारत ने हमेशा दर्शन दिया है कि विश्व एक परिवार है, और वेस्टर्नर्स का दर्शन है विश्व एक बाजार है। तो हमें उस परिवार की को पारिवारिक दृष्टि से, वो सारे पंच महाभूतों की भी दृष्टि, हमारे दर्शन, हमारा दर्शन भारतवर्ष का फर्क है। तो हमें वो सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। और हमने देखा कि ये जलवायु परिवर्तन का जो विषय है, ये अभी तक मेज पर चर्चा का विषय होता था, परंतु आज भोजन, ये जो जलवायु परिवर्तन का असर हमारे मेज के भोजन पर आ गया है। पहले ये मेज की चर्चा थी, अब ये मेज के भोजन पर आ गया है, क्योंकि हमारा भोजन परिवर्तन हो रहा है। ये जलवायु परिवर्तन का अफेक्ट हमारे भोजन पर पड़ रहा है। तो अभी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ये सब ठीक होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। और मैं इसके समाधान के लिए यहां उल्लेख करना चाहूंगी कि इस प्राचीन दर्शन को, जो भारतवर्ष का प्राचीन दर्शन है, उसको इमर्ज या इवोक करने की विधा से, जिसका कि उल्लेख 2015 में हमारे देश के वर्तमान यशस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में, जो यूनेस्को के हेडक्वार्टर में, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में कहा था। मैं कोट करती हूं उनके शब्द, योगा, 2015 की बात है ये, योगा कैन हेल्प द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो आप देखिए उनका दर्शन भी, उनकी दूरदृष्टि भी देखिए आप, योगा कैन हेल्प द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने पुनः कहा था कि पीपल विल हैव टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल एंड डेवलप ए हार्मनी विद नेचर इफ द वर्ल्ड इज टू अवॉइड डेंजरस लेवल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड ही ऑल्सो रिकमेंडेड दैट योग इज वन वे ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एज इट ऑफर्ड पीपल ए सेंस ऑफ हार्मनी विथ सेल्फ एंड सोसाइटी एंड नेचर एंड कॉन्शियसनेस, सोसाइटल कॉन्शियसनेस कैन बी इवोक्ड। तो सेल्फ को और सोसाइटी को और नेचर, ये हार्मनी में सब होना चाहिए। तो ये बात है 2015 की। और उसके बाद ये ग्लासगो में COP26 के दौरान जलवायु परिवर्तन का कारण मोदी जी ने फिर हाईलाइट किया कि लाइफ स्टाइल के परिवर्तित स्वरूप को उन्होंने बताया। और बाद में वहीं पर उन्होंने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आइडिया, लाइफ, आजकल आपने देखा होगा लाइफ की सीरीज भी चल रही है, कैपिटल एल स्मॉल आई, कैपिटल एफ और कैपिटल ई, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आइडिया को उन्होंने कंपेन रूप में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य यह था कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनानी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं। और जब हम भारतवर्ष में लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं, और वो भी कृषि में, तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी। वैसे तो अनेकों हैं, जितने हमने समस्याएं बताई उन सबके लिए एक एक एग्जाम्पल है, परंतु मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी समय की मर्यादा को देखते हुए, कि हम बैलों और गायों का उपयोग अत्यधिक करते थे। पुरानी लाइफ स्टाइल, हम बैलों और गायों का उपयोग करते थे, जमीन और जानवरों का एक मजबूत रिश्ता था। परंतु आज वो गाय और बैल का स्थान किसने ले लिया है? इस विशाल काय ट्रैक्टर ने लिया है। अब आप एक थोड़ा सा अपना अपना सोच इसमें मुझे बताएंगे। आप स्वयं सोचें कि एक ट्रैक्टर जो कि पेट्रोल और डीजल पीकर वातावरण में धुआं और कार्बन इमिशन को बढ़ाता है और जलवायु चेंज का एक एक सपोर्ट सिस्टम बनता है और वातावरण को प्रदूषित करता है, और वहीं पर गाय बैल उपलब्ध घास पात और भूसा आदि खाकर गोबर गौमूत्र दूध आदि मनुष्य को सुंदर उत्पाद देती है, परंतु हम सब्सिडी किसको देते हैं? गाय और बैल को नहीं, हम सब्सिडी देते हैं ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं उसको, लेकिन गाय से हमारा गोबर गौमूत्र और बहुत बढ़िया उम्दा किस्म का दूध और डेयरी प्रोडक्ट तमाम चीजें मिल रही हैं, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो ये लाइफ स्टाइल हमें चेंज करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है और। अदरवाइज ये जलवायु परिवर्तन जो मोदी जी ने कहा है ना कि हमें लाइफ स्टाइल आमूल चूल परिवर्तन उसमें करने पड़ेंगे, तभी हम जलवायु परिवर्तन से ये विश्व है ना, और यूएन भी जो एसडीजीज के माध्यम से कहता है तो वो हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। और इसमें यौगिक खेती का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि बताया कि पंच महाभूत, हल बैल सभी की पूजा, प्रकृति से प्रेम विश्वास, पशु पंछी सभी को ऐसे भाव से, हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाव से खेती करते थे कि प्रकृति को देना है, इस भाव से खेती होती थी। परंतु आज तो बिल्कुल उल्टा है, सभी जीवों का सम्मान है, जब सभी को सम्मान देते थे स्वयं स्वमान की स्थिति में रहते थे और सम्मान की स्थिति में रहते थे, और गौ कृषि वाणिज्यम के आधार पर उत्तम खेती करके हम स्वर्णिम काल में थे। और इसी प्राचीन भारत की प्राचीन परंपरा को ये ईश्वरी विश्वविद्यालय पुनर्जागृत कर रहा है, और इसमें वो वैज्ञानिक, सबसे अच्छी बात यह है कि साथ साथ में उसको वैज्ञानिक जामा पहनाने का भी काम इस विश्वविद्यालय के सपोर्ट सिस्टम से हो रहा है, जो कि अनेक विश्वविद्यालयों में हमने अपने विश्वविद्यालय में किया। हमने दो थीसिस एमएससी के विद्यार्थियों को कराई, बहुत अच्छे परिणाम आए, पब्लिश हुए, और अब इसके साथ में और विज्ञान उसमें बहुत कुछ आगे। हमने तो बीज पर काम किया था, बीजों की फिर हमने सारी एनालिसिस करी, उसकी ग्रोथ, उसका जर्मिनेशन, शूट लेंथ, रूट लेंथ, उसकी एंजाइम स्टडी, और उसमें उसकी बायोकेमिकल स्टडीज जो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो सारा विज्ञान को करा गया, थीसिस जमा करी गई। अब उसमें और बहुत हायर साइंस करने की जरूरत है, बहुत ही मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की जरूरत है, जिसके लिए अभी हाल में दो एमओयू साइन हुए हैं, एक कल और एक अभी कुछ मास पहले एमपीयूएटी जो विश्वविद्यालय उदयपुर में है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उससे भी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक एमओयू साइन हुआ है। तो इसको विज्ञान का चोला पहलाना, तभी दुनिया मानेगी, ऐसे तो नहीं मानती है, तब भी नहीं मानती, लेकिन और वो एक सही भी है कि विज्ञान का डाटा जरूर होना चाहिए आज के समय में, तो उस पर ये विश्वविद्यालय इसको वैज्ञानिक जामा पहनाने का कार्य कर रहा है। तो योग के प्रयोगों द्वारा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का निदान कर सकने में संपूर्ण सक्षम हैं, बस आवश्यकता है इसे प्रारंभ करें। और परमात्मा कहता है, एक कदम आपका हजार कदम बाप का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने अनुभवों की खान को सागर से गागर में भरने तक सीमित कर दिया, परंतु चंद शब्दों में बहुत कुछ कह गई। और आवश्यकता इसी बात की है कि न केवल हम बाहर के अलग अलग सोर्सेज जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहे हैं उसको देखते रहे या उसी के बारे में चर्चा करते रहे, परंतु आवश्यकता इस बात की भी है कि जो मानसिक प्रदूषण के लिए हम हरेक पर्सनली जिम्मेवार है, उस पर भी हम ध्यान दें, अपने मन को बदले, जीवन को बदले और उसमें राजयोग की भूमिका के लिए भी बार बार मंच से आप सभी को बताया जा रहा है कि अगर राजयोग को हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो मन मस्त, तन तंदुरुस्त और साथ ही साथ जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो हमारे मानसिकता के वाइब्रेशंस, हमारे मानसिक विचारों का शुद्धिकरण होगा और वही शुद्ध वाइब्रेशंस प्रकृति के प्रदूषण को रोकने में भी मददगार होंगे। पुनः एक बार पांडे मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आज के हमारे अतिथि जिनको सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, आज के विषय पर हम सभी के बीच प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं अपर कृषि निदेशक भूमि संरक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ से आदरणीय भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया जी। आपने अपने सेवा क्षेत्र के कार्य को न केवल यूपी तक सीमित रखा परंतु राजस्थान में भी आपने अपनी सेवाएं दी है और आपके इस सफल प्रयास से उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान भी अभिभूत हुए हैं इन सेवाओं से। आपने जीबी पंत यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एमएससी करने के बाद अभी अपर कृषि निदेशक के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। हम आपके विचार सुनेंगे आदरणीय भ्राता सिसोदिया जी।
ओम शांति। आदरणीय मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन राज जी, भाई राजेश दवे जी, भाई महर्षि दवे जी, मेरे पंतनगर यूनिवर्सिटी की वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी और कार्यक्रम का संचालित कर रही बहन रूपा जी, सम्मानित महानुभावों, भाई और बहनों, अभी आपने पिछले एक डेढ़ घंटे में भाई राजेश जी का और बहन सुनीता जी का वक्तव्य सुना। राजेश जी ने सीएसआर के माध्यम से और अपने प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से किस तरह किसान खेत में निपट सकते हैं उस पे चर्चा की, उसके उदाहरण पेश किए। सुनीता जी ने भी खेती में शाश्वत यौगिक खेती के किस तरह प्रयोग किए जाएं, किस तरह अनुप्रयोग किए जाएं और हम किस लेवल तक खेती में पहुंच सकते हैं उस पर चिंता व्यक्त की। मैं इस विषय में जो आज का यौगिक कृषि द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के निदान का विषय है, उनके वक्तव्य की सामग्री से कुछ पीछे आपको ले जाकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले देखने की जरूरत यह है कि जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ और जलवायु है क्या। जलवायु दो ही शब्द हैं, जल और वायु आप समझते हैं। तो लंबे समय तक किसी एक एरिया में इन दोनों का जो समीकरण है वो जो मौसम उत्पन्न करता है, वातावरण उत्पन्न करता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। मौसम हमारा खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, वायु कैसी चल रही है, तापमान कैसा है, वर्षा का स्तर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, थोड़े समय के लिए वो मौसम है। और जब उसको लंबे समय में हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो हमारी जलवायु होती है। अब जलवायु परिवर्तन 2015 से तमाम सम्मेलन के उदाहरण आपके समक्ष प्रेषित हुए, बताए गए। जलवायु परिवर्तन के पीछे कारक क्या हैं? ऐसा क्यों हुआ कि तापमान में वृद्धि हुई? हमने ऐसा क्या किया कि आज हम इस विषय पर इतने गंभीर हैं? हमें जो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल जो क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई, इवन खेती की जो क्रांति आई, उस समय हमें आवश्यकताएं थी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की, और इस सब के लिए नाना प्रकार के उद्योग, कल कारखाने लगे। और उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन हुआ वो हमारा जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा कारक बना। जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जो अफेक्ट होती है, उसके दो कारण हैं, दो प्रकार के कारक हैं, एक जैविक कह सकते हैं, बायोटिक या अजैविक कह सकते हैं। दूसरा, बायोटिक में हम लोग सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस है, डिकम्पोजिशन है, गोबर का उदाहरण दिया गया, और डाइजेशन है। अभी पिछले दिनों में मानवों में, हम लोगों में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ी है। मांसाहार की प्रवृत्ति उस जानवरों को पालना और उसको मांसाहार जो डिश बनाने तक सबसे ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है और सबसे ज्यादा गैसों का उत्सर्जन होता है। तो इन सब चीजों के कारण जो तापमान में वृद्धि हुई, जो रेडिएशन में तापमान में वृद्धि हुई, उसके कारण हमारे पास कुप्रभाव आने शुरू हुए। अमूमन ये है कि जितना रेडिएशन आ रहा है उसका लगभग 70% जमीन हमारा एब्जॉर्ब कर लेती है और 30% वापस जाता है। लेकिन जब हमारी ये गैसेस, जो जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये वायुमंडल में मौजूद हैं, तो जो रेडिएशन 30% ऊपर जा रहा है वो वापस जमीन की तरफ आकर हमारे तापमान में वृद्धि कर रहा है। पृथ्वी पर तमाम विषमताओं के बावजूद, हमारे यहां जल है, जंगल है, पानी है, रेत है, पहाड़ है, बर्फ है, तमाम विषमताओं के बीच जितने भी ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, सब तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो इस पृथ्वी पर हैं। दूसरा ग्रह आपका प्लूटो है, जहां -187 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। एक ग्रह आपका वीनस है, जहां 457 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है टेम्परेचर पे। एक ग्रह मार्स है, जहां माइनस में रहता है 148 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का आशय यह है कि ये पृथ्वी ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण हमारा ग्रह है और इसको हमें बचाना है। हमारा जो गैस का उत्सर्जन है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें 19% कार्बन डाइऑक्साइड, जो टोटल कार्बन एमिशन है, उसका लगभग 19-20% हमारा एग्रीकल्चर की तरफ से जाता है। मीथेन में 40% की जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड में 52%। यानी जो गैसों के उत्सर्जन में कृषि और सहयोगी उद्योगों या सहयोगी इंडस्ट्रीज का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है, और हमें शाश्वत यौगिक खेती और जो विषय यहां बताए गए हैं उनके माध्यम से उस एमिशन को कम करना होगा। इस जलवायु परिवर्तन से होना क्या है, नुकसान क्या है, आप सब भलीभांति जानते हैं क्या हानि हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का जो आंकड़ा है वो अगर आप देखें तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक नेचर सस्टेनेबिलिटी मैगजीन है, इस मैगजीन में एक स्टडी किया है और भारत के बारे में ऐसा बताया है कि अगर 2.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भारत की 60 करोड़ आबादी प्रभावित होती है। अगर 1.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें 6 गुना कमी आती है। दूसरा सबसे बड़ा जो कंट्री है जो इस टेम्परेचर बढ़ोतरी का दुष्प्रभाव झेलेगा वो नाइजीरिया है। आईपीसीसी का जिक्र मैडम कर रही थी, उसने भी ये बताया है कि 723 डिस्ट्रिक्ट 27 स्टेट के, यहां पर समर के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और जो जाड़ों का टेम्परेचर है उसमें गिरावट आएगी। सुबह भाई विष्णु जी भी बता रहे थे कि 100 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज इस तापमान के बढ़ोतरी के कारण नष्ट हो चुकी हैं। 5% फिश प्रजाति खत्म हो गई हैं, 11% बर्ड्स चिड़ियाएं खत्म हो गई हैं, और दो तिहाई तितलियां अब तक खत्म हो चुकी हैं। तो आप इसका अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका क्या हमारे पास में दुष्प्रभाव आने वाला है। ये विभिन्न जल स्रोतों पे जो हमारा प्रभाव है, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, ऐसा माना जाता है। एक स्टडी है इसमें 1961 के बाद, 1961 के बाद भारी मात्रा में ग्लेशियर्स पिघल गए हैं। 1,17,000 घन किलोमीटर के ग्लेशियर्स हमारे यहाँ पूरे ब्रह्मा इसमें पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। वो पिघल जाएंगे तो पानी बढ़ेगा, पानी की मात्रा, जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर अगर पिछले 61 के बाद जो स्टडी है 2.5 इंच जल स्तर बढ़ने की बात कही जाती है, तो जो कोस्टल एरिया हैं वो सब डूबने के कगार पे आएंगे। और जो टेम्परेचर शिफ्टिंग है, ऐसा भी कोई स्टडी, ऐसा भी माना जाता है कि जो राजस्थान का क्लाइमेट है ये टुवार्ड्स यूपी मध्य प्रदेश की तरफ खिसक रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो चुनौतियां हैं जलवायु परिवर्तन की वो बहुत ही गंभीर हैं, और जिस तरह का जन सामान्य काम कर रहे हैं, ये संस्थान काम कर रहा है, विश्वविद्यालय यह काम कर रहा है, उससे हम निश्चित रूप से उन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे और शाश्वत यौगिक खेती उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। शाश्वत यौगिक खेती के बारे में आपने कल से लगातार सुना है, इसकी जितनी भी विधाएं प्रचलित हैं या सिद्धांत प्रतिपादित हैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है। मैं दो बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उदाहरण के स्वरूप, जब मैं जिस बेल्ट से आता हूं वो गन्ना बाहुल बेल्ट है, और जब हम छोटे थे गांव में रहते थे तो उस समय जो गन्ने की बुआई का काम होता कार्तिक के महीने में, उस समय मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरे यहाँ उस प्रथा को कहते हैं डंगवारा। डंगवारा मीन्स ये होता है कि भाई एक दो चार फैमिली मेरे यहाँ काम करेंगी आके, फिर इकट्ठा होके हम उसके यहाँ पे काम करेंगे। तो उस समय जब गन्ने का बुआई होती थी तो बैलों वगैरह को सजा के खेत में ले जाया जाता था, और हमारी जो हल है, हल जब कुंड में खोदने के लिए जाता था तो हमारी दादी, हमने देखा है स्वयं, वो हल्दी से उसका तिलक करके चावल भी डालती थी। तो मुझे लगता है उस समय हम नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये क्या है, मुझे लगता है पर्सनली कि संभवतः भी वो भी शाश्वत यौगिक खेती का एक प्रकार था। मैं दूसरा उदाहरण भी देना चाहूंगा। करीब 15 वर्ष पहले मैं एक जिले में काम करता था, वहां राजकीय गवर्नमेंट के दो फार्म थे। एक जो वहां फार्म इंचार्ज थे उनका नाम मुझे याद है, वो थे मिस्टर भीम सिंह त्यागी, तो उनको एक्स वाई कह लेते हैं हम। तो जब मैं फार्म एक्स त्यागी पे जब भी कभी गया तो मैंने उसको खेत में खड़े पाया। आई डोंट नो कि वो क्या करते थे वहां, वो अच्छा ही करते होंगे, खेत में खड़े पाया। और यदि मैंने उनसे कहा कि भाई त्यागी जी आपके इस प्लॉट में देखो वो पौधा कुछ सुस्त दिख रहा है या उसको कोई बीमारी या कीड़ा लग रहा है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कीचड़ हो, पानी हो खेत में, कुछ भी हो, तो इमीडिएटली ही यूज टू जंप इनटू द फील्ड और उसको वो निकाल के जो ट्रीटमेंट करना है वो करते थे। दूसरे जो मेरे फार्म मैनेजर साहब थे वो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई आप देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है तुम्हारे खेत में, तो ही विल कॉल समवन अगर तो वो मौके पे उसका निस्तारण नहीं होता था। और ये फैक्ट है, मैं मंच को और आप सबको बताना चाहूंगा कि जो मिस्टर त्यागी का फार्म था वो 2 लाख प्रॉफिट से 6 लाख 3 साल में गया और उनका 6 लाख से 2 लाख पे आया। तो कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति जो हम यहाँ संवेदनाओं की प्रकट करना पौधों के साथ बात करने के लिए करते हैं इस शाश्वत यौगिक खेती में, तो हम अपने जो प्रचलित खेती है उसमें भी हम अपने एक्सटेंशन सिस्टम में किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो प्रतिदिन अपने खेतों पे जाएं, वहाँ उनको ऊपर से नीचे तक देखें, उनसे बात करने की तो बात हम लोग नहीं करते हैं, मगर इतना अवश्य करते हैं कि उसको ऊपर से नीचे तक निहारें और उसके स्वास्थ्य को देखें, जाएं वहां, तो उसका असर खेती पे, चाहे वो शस्य क्रियाओं में जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के रूप में पड़ता हो, अवश्य पड़ता है। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको अपने विचार रखे जलवायु परिवर्तन और शाश्वत यौगिक खेती के बारे में। मैं ईश्वरी प्रजापति ईश्वरीय इस विश्वविद्यालय और ग्रामीण एवं कृषि विकास विभाग और अपने बद्री विशाल तिवारी जी जो यहाँ हमको लेके आए हैं, उन सब का अपने दिल से बहुत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आने का मौका दिया, यहाँ इस पवित्र स्थल के दर्शन करने का मौका दिया और आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का मौका दिया। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार। हम सभी को आज के इस विषय में इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि किस प्रकार से पुनः एक बार आवश्यकता है हमारी भारतीय संस्कार और संस्कृति को पुनः जागृत करने की। चाहे विषय कोई भी हो, लेकिन बात हर बार ये आ रही है कि किस प्रकार से धरती को माता समझकर अन्नदाता किसान खेत को प्रणाम करके उसमें चप्पल उतारकर प्रवेश करता था, और उस समय उस जमीन का कस भी ऐसा था कि ऐसे लगता था जैसे मक्खन पर पैर रखकर चल रहे हैं। चाहे उसको उपयोग में लाने वाले साधनों को पूजा अर्चना करके उसके प्रति अपना भाव प्रकट करके उसको यूज किया जाता था, चाहे भजन की दो लाइनें गुनगुनाता हुआ वो किसान अपने खेत में कार्य करता था, वो सारा कुछ आज परिवर्तन हो चुका है। और जहां भजन की लाइनें गुनगुनाई जा रही थी, वहां आजकल ट्रैक्टर पर चलने वाले टेप रिकॉर्डर में क्या गीत बजते हैं और क्या वाइब्रेशंस उस जमीन में जाते हैं वो हम सभी जानते हैं। जो किसान प्रणाम करके खेत में पहुंचता था, वहां आज वो ट्रैक्टर वाला या किसान भाइयों के मुंह में जो पान गुटखा होता है उसकी पीक किस प्रकार से धरती को दूषित कर रही है ये हम समझ रहे हैं। तो भाई साहब ने, सिसोदिया जी ने जो बातें कही उसमें से एक बात कि हमें इनिशिएट लेने की आवश्यकता है। त्यागी जी की बात से हम इतना तो सीख ले कि हम दूसरे के लिए इंतजार न करें, हम स्वयं शुरुआत करें, हम पहल करें अपने आप से, क्योंकि हम वो पहली पीढ़ी है जो जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रही है। और हम आज इस मंच से ये आह्वान करना चाहेंगे कि हम ही वो आखिरी पीढ़ी हो जो इस कार्य को यहीं पर परिवर्तन के आधार से खत्म करे, हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका भुगतान न करना पड़े। तो यही आज के इस कार्यक्रम की विशेष सफलता रहेगी। सभी मंचासीन महानुभावों ने हम सभी को अपने अपने अनुभवों के आधार से बहुत अच्छी बातें बताई। इसको गांठ बांधकर हम इस परिवर्तन के कार्य में आज से ही शुरुआत करेंगे, ताकि हम सभी मिलकर के खुद भी जागरूक होंगे और औरों को भी सतर्क करते रहे कि इस क्लाइमेट चेंज को, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको अभी से हम परिवर्तन की प्रक्रिया में स्वयं को आगे रखेंगे। और अभी हमारे बीच जो अतिथि है उनको सम्मान और विशेष परमात्मा के घर में आप पधारे, समय निकाला उसके लिए विशेष शॉल ओढ़ाकर आदरणीय राज दीदी जी के माध्यम से, सॉरी पहले हम राज दीदी जी का वक्तव्य जरूर सुनेंगे। दीदी जी को आप देख रहे हैं, आप वर्तमान समय में इस शरीर की 80 वर्ष की आयु में है, परंतु इतनी एनर्जेटिक है कि आप हम सभी से पहले इस कार्यक्रम में पहुंची। और खास रूप से जिस समय दीदी जी ने संस्था के संपर्क में आकर के अपनी जीवन को सफल बनाने का लक्ष्य लिया, उस समय आपने एमए बीएड किया था। आप चाहती तो एक बहुत अच्छा करियर अपने जीवन में बना सकती थी, लेकिन आपने ईश्वरीय पथ पर चलकर अनेकों के जीवन को सुगम बनाने की राह चुनी। वर्तमान समय में आप ग्राम विकास प्रभाग की दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर है, और मजलिस पार्क दिल्ली के इंचार्ज के रूप में सेवाएं देने के साथ साथ नेपाल के भी कई सेवा स्थानों को आप संचालित कर रही है। आदरणीय दीदी जी की एनर्जी हम सभी तक पहुंचाने के लिए दीदी खुद चलकर यहां तक आए हैं। जोरदार तालियों से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के युग में हम सभी चुनौतियों के बीच में जी रहे हैं, अच्छा यूं कहें कि जीने को मजबूर है। उन चुनौतियों को जीतने के लिए अनेक तरह की बातें निकली हैं और हम देख रहे हैं कि आज ज्येष्ठ में सावन आ गया है तो शायद जब दिसंबर होगा तो लू चल पड़ेगी। हम सभी ये सब सहन कर रहे हैं और साथ में सोच भी रहे हैं। हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, पर परम सत्य के निदान से थोड़ा दूर है। साइंस ने बहुत प्रयोग किए, सरकार ने बहुत कुछ किया, किसान तो कर ही रहे हैं और हमारे सेवारत इस विंग के भाई बहन भी बहुत कुछ कर रहे हैं। किसान भाई बहने बहुत मेहनत कर रहे हैं। बात बनाना आसान है, कथनी मीठी खांड है, करनी विश्की लो। वो करते हैं, करके दिखाते हैं। अब बात यह है कि इतनी भयंकर चुनौतियों को सर्वपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से कौन जीत सकता है? चुनौतियों का सागर जो परम सत्य है, जो ज्योति का सागर है, साइंस से भी परे है, साइलेंस का सागर है, जो सर्वशक्तियों का सागर है, वही जीत सकता है। ये बातें कपोल कल्पित नहीं है परंतु वास्तविकता है। आप सभी ने जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे, सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा कि सागर को अगस्त्य ऋषि ने पी लिया तो सागर पे भी जीत पाई ना। रामायण में प्रसंग है कि जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था तो बाली से बचने के लिए सुग्रीव जिस पर्वत पर गए, बाली उस पर नहीं पहुंच सका, बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि वह एक औरा था तपस्या का, वो उसको पार नहीं पा सका। लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया जा सकता। अनेक बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने ज्वलंत प्रमाण है कि आध्यात्मिकता ने विजय पाई सब बातों के ऊपर और सर्व चुनौतियों को चुनौती दे दी। एक विशेष प्रसंग याद आता है, एक राजकुमार प्रद्युम्न भी हुए जिनकी शादी होने के बाद उनका अपनी पत्नी से इतना लगाव हो गया कि वो एक मिनट भी उसको देखे बिना रह नहीं सकता था, उसके बिना जी नहीं सकता था, ऐसा अनुभव करता था। जब उसकी पत्नी प्रेसी मायके जाने लगी और बोला मैं भी साथ जाऊंगा, अब राजकुमार है कौन रोके उसको। राजकुमार की तैयारी की गई, उसके मित्र अन्य देशों के राजकुमार भी तैयार हो गए, बहुत सारी प्रजा भी तैयार हो गई और बहुत बड़ा काफिला संग चल पड़ा। पहले तो रास्ते में पड़ाव हुआ करते थे, कोई प्लेन से नहीं जाते थे, और रास्ते में एक जगह बहुत सुंदर जगह पर पड़ाव हुआ, जो और पहाड़ थे, बीच में हरियाली थी, शीतल मंद समीर थी, बहुत अच्छा वातावरण था, और सब वहां पर रुक गए। तभी उस राजकुमार को एक दिशा की तरफ आकर्षण हुआ, इतना अधिक आकर्षण हुआ वहां चला गया और देखा एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या का, शांति का, साइलेंस का इतना प्रभाव था, वो पत्नी भूल के उनमें मंत्रमुग्ध हो गया और बोला कि मुझे तो राज्य देखना ही नहीं है, मैं वापिस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इन्हीं के पास रहूंगा। वो साइलेंस का आकर्षण, वो ऑरा, वो प्रभाव उस क्षेत्र में इतनी दूर तक था कि वो दैहिक प्रेम को भूलकर वो आध्यात्मिकता की तरफ चल पड़ा, और उसके साथ जितने भी उसके साथी आए थे, जितनी प्रजा आई थी, सारी की सारी प्रजा ने सरेंडर कर दिया। ये किसकी ताकत है? कई लोग कह सकते हैं कि सब तो कहने की बातें हैं, जब मूसलधार बारिश आती है, किसान डूब रहा होता है, सामने बच्चे की तरह पाली हुई फसल बर्बाद होती है, कितना दुख होता है, तो उस टाइम एक भाषण, ये बातें, ये ग्राम विकास क्या कर सकेंगे? वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी अभी बहन जी ने कहा था, रूपा बहन ने, कि अभी दीदी की शक्ति, इनकी वाणी की शक्ति हम देखेंगे। मुझ में कोई शक्ति नहीं है, वाणी में भी नहीं है, पर एक सत्यता में शक्ति है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। समय प्रति समय हमारे अन्य स्पीकर्स ने इस बात का इशारा किया है, अव्यक्त इशारा, कि लाइफस्टाइल बदलो, थोड़ा सा इशारा दिया है। आज आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि जो अगस्त्य सागर पी सकता है, जिस सन्यासी में इतनी ताकत है कि इतनी प्रजा को बदल देवे, जिसको याद कर रहा था, क्या उसमें ताकत नहीं है? वो किसको याद कर रहा था? परम सत्ता को, शांति के सागर को, आनंद के सागर को, हम सबके परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को। तो आइए आज हम इस आध्यात्मिकता की मेन धुरी, कड़ी, इसको पकड़े और एक प्रण लें। वैसे तो आप सभी आध्यात्मिक ही हो, भूले हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी आप सभी हो, क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा ने रची है, तो उसके औलाद क्या हुए? फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए ना, राजा का बेटा राजकुमार, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। केवल हमें स्टैंप लगा है, आपको लगा नहीं है, अंतर इतना है ना। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने इस मजबूर जीवन से, आज कहीं शादी होती है तो पिता कहता है मैं थका हूं, मैं नहीं जाऊंगा, माता कहती मैं नहीं जाऊंगी, लिफाफा देके बच्चे को बेच के एक रस्म पूरी कर देते हैं। ऐसे जीवन से हटकर हम सभी स्नेह पसंद, आत्मिक, आप सब आत्मा हो ना, शरीर तो नहीं है। सोमनाथ मंदिर देखा होगा ना कईयों ने, उस राजा की बात बताई है ना, नर्ती का नृत्य देख रहा था, नाचते नाचते देखकर गिर पड़ी, उसकी डेथ हो गई। तो सोचने लग गया कि ये सौंदर्य, ये देह, इस अविनाशी है। इस सत्यता को याद कर लीजिए, सत्यता के सागर को याद कर लीजिए, परम पिता परमात्मा को याद कर लीजिए। याद ऐसे नहीं करना है, राम 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 एक, राम 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 दो, गिनतियां करनी है जैसे मंदिर में करते हैं, नहीं। दिल को आराम देने वाले परम पिता परमात्मा शिव पर भरोसा करो, एक बल एक भरोसा। और जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उसके निदान आप सभी ने बता ही दिए हैं, इसलिए मैं ऊपर से आया हुआ निदान बता रही हूं। और आज ये फील कीजिए कि ऐसी शक्ति की किरणें ऊपर से आ रही हैं, मैं आत्मा हूं, इस देह से निहारी ब्रिकुटी में निवास करने वाली ज्योति बिंदु, देह से निहारी उस आत्मा के पिता परम पिता श्री परमात्मा हम सब पर ऐसी किरणें विकीर्ण कर रहे हैं जो जलवायु और परिवर्तन होकर हमारे फेवर में हो जाएगा। नदियां पाटों में बहेंगी, आग चूल्हे में जलेंगी और वातावरण मौसम के अनुकूल होगा। ऐसा होने वाला है, ऐसा युग आने वाला है, ये सबसे बड़ा निदान है। इसे ही सहज राजयोग कहते हैं। और बीजों को भी, खेती को भी, फसल को, सबको हम उन किरणों से संस्कारित करें तो हल हुआ पड़ा है। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार दीदी, आपके संकल्पों से हम सभी यही प्रेरणा लेकर जाएंगे कि जो आज के जीवन में हमारे बीच अपनत्व का रंग और गुणों की सुगंध खो गई है उसको फिर से इस शुद्ध वातावरण से और सात्विकता से धारण करके जाएंगे और घर में भी जनक मिसल रह करके अपने जीवन का परिवर्तन औरों के लिए प्रेरणा बनाएंगे। और अभी हमारे बीच जो हमारे भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया जी समय निकालकर पहुंचे हैं, बहनों से अनुरोध है कि राज दीदी जी के द्वारा उनको शॉल ओढ़ाकर और यहाँ पर आगमन पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत किया जाए। मंच पर विद्यमान हमारे ब्रह्मा कुमार राजेश दवे जी, ब्रह्मा कुमार महर्षि दवे जी, डॉक्टर सुनीता पांडे जी, आदरणीय राजयोगिनी राज दीदी जी और भ्राता वीरेंद्र कुमार सिसोदिया जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इतने गंभीर विषय को सरलता से हम तक पहुंचाने के लिए दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने भी इस गंभीर विषय की गंभीरता को समझकर परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। ओम शांति।